ओम शांति। आप सभी ने अपने सुंदर चमकते हुए फूलों से स्वयं का भी स्वागत किया, आसपास वालों का भी कर लिया। अब मैं आप सभी का इस ज्ञान विज्ञान और निर्माण की इस पावन संगम स्थली ज्ञान सरोवर में आप सभी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स यानी आप सभी बुद्धिजीवियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज यहाँ केवल प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि ऐसे माइंड्स उपस्थित हैं जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और इसी कारण आज का जो विषय है हमारा इनर मास्टरी फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी इंटेलिजेंस अभी भी इनर इंटेलिजेंस ही है, क्योंकि कहते हैं कि यदि मन स्टेबल नहीं है तो नॉलेज आपके लिए प्रेशर बन जाता है। यदि मन स्टेबल नहीं है तो नॉलेज प्रेशर बन जाता है, और यदि मन मास्टर है तो प्रेशर भी आपके लिए परफॉर्मेंस बन जाता है, प्रेशर भी आपके लिए परफॉर्मेंस बन जाता है। तो हम सभी अपने परफॉर्मेंस को सबसे सर्वश्रेष्ठ लेवल पर ले जाने के लिए इसी विषय पर मनन, चिंतन, मंथन और अनुभव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं हमारे बीच हमारी इस अनुभव को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को विकसित करने के लिए जो सम्माननीय अतिथि हैं, जो बहुत ही बुद्धिजीवी है, अनुभवी है, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, हम सभी के बीच इस मंच की शोभा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा न्यू दिल्ली से माननीय भ्राता हरिवंश जी, परम श्रद्धेय आदरणीय सुदेश दीदी जी जो जॉइंट चीफ है हमारे ब्रह्मा कुमारीज की, और हमारे इस कॉन्फ्रेंस की होस्ट यानी इस ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर भी आप हैं जो यहाँ का पूरा संचालन देखते हैं। साथ ही हमारे इस कॉन्फ्रेंस के प्रेरणा स्रोत और विंग के चेयरपर्सन माननीय भ्राता मोहन सिंगल जी, इनके साथ ही हमारे बीच और भी माननीय अतिथिगण आए हुए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दिल्ली से मिस्टर ए भौमिक जी को, साथ ही माननीय भ्राता राम कुमार श्रेष्ठा जी जो नेपाल से हमारे बीच आए हैं, परम आदरणीय करुणा भाई जी हमारे सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन से हमारे बीच आएंगे, साथ ही चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश माननीय भ्राता सगम रेड्डी श्रीकांत एन रेड्डी जी को। हमारे बीच न्यू दिल्ली से आईओसी से आए सीजीएम के पद पर कार्यरत बहन अंजलि भावे जी, आदरणीय भारत भूषण भाई जी जो पानीपत से आए हैं, और आदरणीय पीयूष भाई जो न्यू दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। आप सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाए। कहा गया है कि बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, दिस मोमेंट इज योर लाइफ, अर्थात इस एक पल में जिस समय हम परमात्मा के घर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत खुश हैं, और हम सभी चाहते हैं कि इस खुशी को हम सदाई कायम रखें। आप सभी बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों का समय निकाल कर आए, अपने सारे कार्य अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर आए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ जिस तरह आप अपनी जिम्मेवारी काम छोड़कर आए हैं, तो कम से कम जब तक आप यहाँ रह रहे तब तक मन और बुद्धि से भी उन सारी जिम्मेवारी और काम को उस परमात्मा पिता जो होस्ट है उन पर छोड़ दे, उस सर्वशक्तिवान पर, और निश्चिंत तो होकर परमात्मा गोद में इस पूरी कॉन्फ्रेंस का आनंद ले, यहाँ से सीखे, अनुभव लेकर जाए अपने साथ में, सिर्फ मोबाइल में नहीं परंतु अपने मेमोरीज में भी। तो हम सभी दो मिनट के लिए उस परम शक्ति परम इंजीनियर परमात्मा पिता को अपनी सारी जिम्मेवारियां चिंताएं सौंप देते हैं पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ, और उन्हें याद करते हैं।
अवतरित होकर भाग्य विधाता अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। आंचल भर ले चलो आज जीवन सफल कर ले।
दुनिया में तीन सत्ताएं काम करती हैं, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता। आपको ये देखकर बड़ा हर्ष होगा कि आज हमारा मंच इन तीनों सत्ताओं से सजा हुआ है, तो जोरदार तालियां हमारे इस मंच के लिए। विज्ञान सत्ता भी, आध्यात्म सत्ता भी और राज्य सत्ता भी आज इस मंच पर है, और उससे ऊपर है परम सत्ता परमात्मा। उस परमात्मा के घर में आए हैं तो परम सत्ता, उस परमात्मा की ओर से बड़ौदा की बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मंच का पुष्पगुच्छ बैचेस से स्वागत करेंगे, और हम सभी उस स्वागत में समाहित हैं। हम सभी की तरफ से मंच का स्वागत है, तो हमारी तालियां ही हमारे पुष्पगुच्छ है। माननीय भ्राता हरिवंश जी, आदरणीय सुदेश दीदी जी, कहते हैं जहां ज्ञान की बातें काम नहीं आती वहां अनुभव काम आ जाता है, और अनुभव वो धन है जो संघर्ष और श्रम से प्राप्त होता है। हमारे इस मंच पर आज ऐसे ही अनुभवी वक्तागण, अतिथिगण विराजमान है, तो इनका पुष्पगुच्छ बैच और बच्चों के द्वारा स्वागत हो चुका है। अब हम अपनी वाणी यानी मधुर गीत के द्वारा हमारे अतिथियों का और सभा में उपस्थित आमंत्रित भारत और पूरे नेपाल से आए हुए आप सभी का, अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमारे मधुर वाणी ग्रुप को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कल भी आप सभी ने हमारे मधुर वाणी का मधुर गीत सुना, विषय के अनुकूल भाव को अंदर लिए हुए बहुत सुंदर गीत हमारे बीच प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हमारी इस मधुर वाणी ग्रुप में आदरणीय सतीश भाई, नितिन भाई, गोविंद भाई और बितेंद्र भाई हमारे बीच हैं, जो बहुत ही सुंदर गीत इन भाव के साथ कि इन हरी भरी वादियों में ज्ञान सरोवर मधुबन है, ज्ञान सरोवर में सुंदर सम्मेलन का आयोजन है, अरावली आबू पर्वत का अति आनंदित कणकण है, आइए प्रिय आत्मन स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपको पता है सबसे कठिन काम कौन सा है? जब तक हमारी गीत की तैयारी हो रही है आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, सबसे कठिन काम कौन सा है? सबको खुश करना, सही है। और सबसे सहज काम कौन सा है? सबसे खुश होना, वो तो हमारे हाथ में है ना, यही तो इनर मास्टरी हमारी। तो हम सबको वो खुशी देने के लिए हमारे बीच हमारा मधुरवाणी ग्रुप है, सुंदर गीत के साथ तालियों से स्वागत है।
फिर चहका है ज्ञान सरोवर, फिर चहका है ज्ञान सरोवर, महक रहा मन का मधुबन, वैज्ञानिक अभियंताओं का सादर स्वागत है, अभिनंदन, सादर स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार करें।
इन हरी भरी वादियों में ज्ञान सरोवर मधुबन है, ज्ञान सरोवर में सुंदर सम्मेलन का आयोजन है, अरावली आबू पर्वत का। अति आनंदित कण कण है, आइए प्रिय आत्मन, स्वागत है अभिनंदन है। विज्ञान और तकनीक को अध्यात्म का मिले वास्ता, जीवन में हो चमरासा और खुले स्वर्ग का रास्ता। विज्ञान और तकनीक को अध्यात्म का मिले वास्ता, जीवन में हो समरसता और खुले स्वर्ग का रास्ता। अध्यात्म के संसार में मिलना मन भावन है, अरावली आबू पर्वत का। अति आनंदित कण कण है, आइए प्रिय आत्मन, स्वागत है अभिनंदन है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आंतरिक निपुणता हो, राजयोग आध्यात्मिकता से जीवन में सफलता हो। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आंतरिक निपुणता हो, राजयोग आध्यात्मिकता से जीवन में सफलता हो। राजयोग का योग सीखने प्रभु का निमंत्रण है, अरावली आबू पर्वत का। अति आनंदित कण कण है, आइए प्रिय आत्मन, स्वागत है अभिनंदन है। आध्यात्मिकता राजयोग से हर मुश्किल का हल होगा, विश्व शांति का अग्रदूत अब निश्चित भारत कल होगा। आध्यात्मिकता राजयोग से हर मुश्किल का हल होगा, विश्व शांति का अग्रदूत अब निश्चित भारत कल होगा। शिव शक्तियों संग सेवा में सब करना अर्पण है, अरावली आबू पर्वत का। अति आनंदित कण कण है, आइए प्रिय आत्मन, स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है।
बहुत ही सुंदर और उत्साह भरा गीत हमारे मधुरवाणी ग्रुप ने हमारे बीच प्रस्तुत किया। हम सभी फिर से एक बार तालियों से हमारे मधुरवाणी ग्रुप का भी स्वागत करते हैं। गीत के पश्चात नृत्य द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे बीच भिलाई से, इस्पात नगरी से कुमारी श्रद्धा, कुमारी स्नेहा, कुमारी अतुल्या, अंकिता और वाणी एक बहुत ही सुंदर नृत्य फ्यूजन लेकर आए हैं। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, स्वागत नृत्य नहीं है, परंतु इस नृत्य में इन बालिकाओं का एक भाव, एक संदेश छिपा हुआ है, तो आप सभी इस नृत्य का आनंद भी लीजिए और ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा संदेश छिपा है जो फिर आपको मुझे बताना है।
खातिर हमारे दूर से चलते जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
खातिर हमारे दूर से। जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
बहुत ही सुंदर नृत्य हमारे बीच इन बालिकाओं ने प्रस्तुत किया। क्या संदेश छिपा था इस नृत्य में जो हमारे इस विषय से जुड़ा हुआ है, कोई बता सकता है? वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों था, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों ने एक दो को अडॉप्ट किया, वेस्टर्न ने इंडियन को, इंडियन ने वेस्टर्न को। और एक संदेश इसमें बहुत जरूरी छिपा हुआ था कि म्यूजिक एक ही था पर वेस्टर्न नृत्य भी किया गया और कल अपना क्लासिकल भी किया गया इंडियन, तो दोनों नृत्य किए गए। तो ये संदेश देता है कि परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, पर आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो व्यवहार है वो पॉजिटिव हो सकता है। जरूरी नहीं कि परिस्थिति ठीक नहीं थी इसलिए नेगेटिव रिस्पॉन्ड रहा और परिस्थिति ठीक थी इसलिए पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। परिस्थिति कैसी भी हो आप हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद इन कन्याओं का। हमारे बीच हमारे विंग के चेयरपर्सन आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी, जिनको हम देखते हैं कि सदैव आगे बढ़ते हैं और औरों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। उनकी हिम्मत इस उम्र में भी हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, घुटने चले ना चले, पर उत्साह से हमेशा चलते रहते और चलाते रहते। आज हमारे बीच हमारी इस कॉन्फ्रेंस के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को हमारे बीच रखेंगे आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी. सॉरी, सबसे पहले वेलकम के लिए मैं आदरणीय सुदेश दीदी जी को इनवाइट करना चाहूंगी. जैसे हम कहते हैं कि जहाज कितना भी आधुनिक हो पर दिशा सही दिखाने के लिए कंपास का होना बहुत जरूरी है. ये हम सभी जानते हैं क्योंकि इस फील्ड से जुड़े हुए काफी सारे लोग यहां बैठे हैं. और जैसे कि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है हमेशा, जो हमें सही दिशा निर्देश करे. और यदि वो मार्गदर्शक आध्यात्मिक हो तब तो फिर जीवन का परफॉर्मेंस हर परिस्थिति में आपका हाई होगा, ये तो निश्चित है ही है. हमारे बीच आप सभी यहां दो दिन से आए हैं, कुछ कल आए हैं, कुछ आज आए लोग. आप इस ज्ञान सरोवर को देख रहे हैं, यहाँ की सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, यहाँ के भाई बहनों को देख रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं. आपको क्या लगता है, क्या आप सभी यहाँ के सारे परफॉर्मेंस से खुश हैं? आवाज नहीं आ रही है तो कैसे समझूं? यस, आपकी आवाज बताती है कि आप सभी खुश हैं. और आप देख रहे हैं कि चाहे भोजन से लेकर आपके रहने की व्यवस्था से लेकर यहाँ का हर एक्टिविटी, आपके सेशन से लेकर सब कुछ इतना व्यवस्थित है. तो ये इतना परफॉर्मेंस जो है ये हाई लेवल का जिसको कहे हम, वो कैसे है? क्योंकि हमारे बीच ऐसे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं जो निरंतर हम सभी का मार्गदर्शन करते, सिर्फ जीवन के लिए नहीं परंतु इस बाह्य सारे अरेंजमेंट के लिए भी. तो आदरणीय सुदेश दीदी जी जो हमारे संस्था के ज्वाइंट चीफ है, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है और आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जावान है, जिनकी उपस्थिति हमें बता रही है, उनके वाइफ्स हम सब तक आ रहे हैं. तो वो वाइफ्स हम पूरे समय उनसे लेंगे ही, लेकिन आदरणीय दीदी जी चूंकि होस्ट हैं तो दीदी जी आप सभी का पूरे दिल से, तहे दिल से स्वागत भी करेंगे और हमारे इस विषय को हमारे बीच स्पष्ट भी करेंगे. आदरणीय सुदेश दीदी जी.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद. मंच पर विराजमान हमारे विशेष अतिथिगण, परंतु अतिथिगण में एक एक का नाम लूं पर मैं अपने भाई कहूंगी. मेरे विशेष भाइयों को अतिथिगण कहूं तो परिचय देने लग जाऊं, वो तो आपको स्टेज से स्टेज सेक्रेटरी से मिल जाएगा. पर और उनका परिचय जो उनके मुख से जो बोलेंगे वो मिल जाएगा. पर मेरे लिए तो मेरे भाई हैं, परिवार में आए हैं, ईश्वरीय परिवार है ये, हीरो का हार है ये. और आप जो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने सभा की शोभा बढ़ाई और हर एक क्षेत्र से, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे इंजीनियर है, चाहे साइंटिस्ट, चाहे आर्किटेक्ट है, चाहे कोई डिग्री ले रहे हैं और चाहे किसी ने किसी भी प्रकार से डिग्री ली है और अभी आंतरिक रीति से सेल्फ मास्टरी का अनुभव और बढ़ाने के लिए यहाँ पर पधारे चैतन्य चमकते सितारों को हृदय से स्वागत है. हीरो के हार को हार्दिक निमंत्रण है, निमंत्रण क्योंकि निमंत्रण पर आए हैं, परंतु अगले वारी निमंत्रण पर नहीं आना, अगले वारी अपने घर में आपको आना है. इसीलिए वेलकम वेलकम वेलकम. जैसे कि आपने आते ही अनुभव किया कि ऐसा नहीं लगा कि कोई भी नए स्थान पर आप आए हैं. आप जैसे ही भाई बहन यहाँ पर हर क्षेत्र में विशेष कोई ना कोई डिग्री लौकिक रीति से लेते हुए अपने अलौकिक जीवन को डिवाइन बनाया है, तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और एकेडमी में आप बैठे हैं, तो वास्तव में पहले जब मैं कहती हूँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये परमपिता परमात्मा के हम सब संतान आत्माएं ब्रह्मा जी के द्वारा, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जीवन में आध्यात्मिकता को हम कैसे अपनाएं, वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है, ज्ञान को विज्ञान बनाया है, जीवन को जीने की कला सिखाकर खुशी से आनंद से जीना कैसे है, शांति और प्रेम से एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट कैसे देनी है। तो आपने पहली प्रेजेंटेशन देखी, आपका वेलकम। परंतु ये ईस्ट और वेस्ट का मिलन वास्तव में विदेशी, हम कहेंगे हम सब विदेशी हैं, हम सब विदेशी भी हैं, क्योंकि हमारा असली देश जहां से हम आत्माएं आई हैं, गुजरात या मारवाड़ या पंजाब या मध्य प्रदेश यूपी ऐसे करके है क्या, आत्माओं का घर एक ही है, हम सब लोग सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर विशेष करके साइंटिस्ट आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स का संगठन है, तो एक एक इंडिविजुअल आर्किटेक्ट भी है, इंजीनियर भी है और साइंटिस्ट भी है, तीनों ये तीनों का संगठन है। वास्तव में हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है, लाइफ किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से वो दूसरी आत्माओं के जीवन को मार्गदर्शन कर सके या फ्यूचर के लिए एक नक्शा बनाए, जीवन के लिए दर्पण बन जाए, जिस प्रकार आर्किटेक्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण देते हैं, कोई भी बिल्डिंग बननी है, कोई भी स्थान है, उसका महत्व क्या है, उसका विशेषता क्या है। परंतु इंजीनियर फिर प्रैक्टिकल में उसको है, हर एक एरिया को रखते ध्यान में रखते हुए उसको किस प्रकार से सेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि रहना ब्लूप्रिंट में रहना नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में लीव जीवन में प्रिंट करना है। तो इसीलिए हर प्रकार के पांचों तत्वों को ध्यान में रखते हुए, क्यों कि जो शरीर रहने वाला है बिल्डिंग में वो पांच तत्व का बना हुआ है, और फिर पांच तत्व से जो पांच तत्व की प्रॉपर्टी है, धरती वायु, धरती दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा स्पेस, साइंटिस्ट का काम है इन पांचों को एक्सप्लोर करना, और उसके लिए मोर एंड मोर एंड मोर कंटिन्यूस सटल ग्रोथ से सटल होते जाना, क्यों के पांचों तत्वों की विशेषता यही है कि वो बहुत सटल है। पहले मोटे रूप में अगर हम देखें तो ये शरीर हमारा सटल होते हुए भी एनर्जी कंबाइंड है तीनों, विचार भी, प्रैक्टिकल जीवन में उसका यूज भी, और साथ साथ एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट भी, और उसका फायदा क्या है, उससे दूसरों को लाभ कैसे मिले, और कोई चीज अगर फुल एनर्जी यूज नहीं हो रही है, लूज हो रही है, तो उसको ब्लॉक कैसे करे, यूज हो रही है तो फुल कैसे करे, नॉलेज फुल, ब्लिस फुल, लव फुल, पीसफुल, पावरफुल, तो सक्सेसफुल। इसीलिए जीवन को सफल बनाना है तो तीनों का कंबाइंड है, सपोर्ट है तीनों चीजों की, बीज सब कुछ समाया हुआ बीज में है, पर बीज का फोटोग्राफ लो, पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहे, फल का टेस्ट नहीं आ रहा है, बीज को चख के देखो फल का टेस्ट नहीं आ रहा है, वृक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा है, राइट। परंतु जब तक उसको धरती नहीं मिली है, प्रकृति नहीं मिली है, पानी नहीं मिला है, सूर्य की शक्ति नहीं मिली है, तो उसकी एनर्जी जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी। पोटेंशियल तो है उसमें, परंतु उसके लिए, उसकी देखभाल करने के लिए किसान और साथ साथ माली चाहिए। तो जीवन की बगिया को सदा फल फलीभूत रखें, अथवा जीवन की पालना के लिए कर्म क्षेत्र पर कर्म इंद्रियां हमारे डिसिप्लिन में रहे, मास्टरी रहे, अंदर की पावर रहे, वो कर्म इंद्रिया अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। भाई मुंह से निकल गया, मैंने बोलना तो कुछ और मीठा ही बोलना था, पर पता नहीं कैसे थोड़ा मेरे अंदर नाराजगी थी, वो मैंने सीधा सीधा उसके उनके मुख पर ही बोल दिया, इंसल्ट कर दी। अब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा करना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, अच्छा ही करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्या होता है, समय पर मेरे से रॉन्ग हो जाता है, सोचता तो बहुत हूँ ये नहीं करूंगी, कंट्रोल नहीं है। अच्छा करना चाहता हूँ, कर नहीं सकता हूँ, बुरा नहीं करना चाहता हूँ, कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अब वो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर किसके हाथ में है? हाथ के हाथ में कंट्रोलिंग पावर है कि वो चमाट न मारे? मुख के पास कंट्रोलिंग पावर है जबान की, दो टू एंड हाफ इंच की जीभ प्लास्टिक की, अगर गुस्सा है, कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, पेशेंस नहीं है, रेस्पेक्ट दूसरे के लिए नहीं है, तो जबान इतनी तेज चलती है तीर कमान की तरह। ये देखेंगे ना, होठ वो कमान है और जीभ क्या है? तीर है। चुभ जाती है, कोई पत्थर मारे तो टांग ठीक हो जाए, 4 महीना 6 महीना लग जावे, पर ये तो ऐसी पत्थर मारने वाली है जो सालों साल जख्म नहीं मिटता, ऐसी कैंची है जो रिश्ते को तोड़ देती है। क्यों कंट्रोल नहीं है? अपनी कर्म इंद्रियों पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, पर क्या करूं, मुख नहीं बोलता पर आंखें तो दिखा देती है नाराज हूं। हाथ चल जाता है, बुरे संग में जाना नहीं चाहता हूं, पर तो संग का असर पड़ जाता है, आदतें खराब हो गई हैं, कंट्रोल नहीं होता, चाहता नहीं हूं कोई भी बुरा संग मिले, बुरी आदत हो। तो कारण क्या है कि हमने बाहर के तत्वों को जो हमारे पास अनलिमिटेड है उसका तो एक्सप्लोर किया है, धरती के नीचे क्या है और आकाश में ऊपर क्या है, वायु का स्तर क्या होता है, जल का क्या होता है, वो सब हमने अच्छी तरह से टेस्ट किया है। परंतु इसको टेस्ट करने वाला कौन और बेस्ट बनाने वाला कौन? जल अपने आप को तो अपने नहीं शुद्ध करेगा ना, तो इसमें सेल्फ मास्टरी जब कहते हैं तो माई सेल्फ कहते हैं तो आई डू इट माई सेल्फ। तो दिन भर में पता नहीं कितने बारी माई माई बोलते हैं, माई बॉडी, माई हैंड, माई फीट, परंतु मैं शेयर नहीं कर सकती, मेरे पैर दर्द है, कोई मुझे 2 महीने के लिए जब तक मेरा ऑपरेशन हुआ है कोई पैर मेरे दे देवे, अपने पहिए ले ले, मेरी टांगे मजबूत है, मैं मेरी दादी बड़ी कमजोर है चलने में, मैं ये नहीं कह सकती मैं तो सो रही हूँ तुम जाके सैर करके आओ, वॉक करके आओ, मेरी आंखें साइट ठीक है, मेरी बहन की आंखें कमजोर है, नैनहीन है, तो मैं ये नहीं कहती मैं सो गई हूँ तुम जाके ये डिबिया यूज कर लो। ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा ही अधिकार है, तो मुझे ही एक्सप्लोर करना है अपने आप को। कोई थोड़ी देर के लिए मुझे प्रिजन में डाल करके बंद रखे भी सही, संस्कार मेरा नहीं बदल सकेंगे, फिर से जेल बर्ड बनते रहेंगे, एक बारी छूटे दोबारा वही भूल किया, फिर छोटे दोबारा वही भूल किया। तो इसीलिए हमको अपना आर्किटेक्ट बन करके अपने जीवन की बिल्डिंग को, अपने मन के मंदिर को, उसके अंदर ज्ञान की, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, सत्यता की, दिव्यता की शक्ति भरनी है। तो फिर हमारी ये कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी। किसके कंट्रोल में? शरीर शरीर के कंट्रोल में नहीं, शरीर की जो मालिक है, जो इस बिल्डिंग में रहती है, जिसने कहा मेरा शरीर, जिसने कहा मेरा नाम, पर ये तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, परंतु मेरी मदर, मेरा फादर, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। मेरा भाई भी मैं कहेगा मेरा पिता, मेरी बहन भी कहेगी मेरा फादर, राइट, मेरी मदर, मेरी सिस्टर की भी मदर है, ब्रदर का मेरा। तीसरी है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, आज मकान मेरा है, कल बेच दिया, मुझे बड़ा मकान चाहिए, बड़ा है छोटा चाहिए, वो बिगाड़ के रखें या पुराना कर दें में मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं। आज मेरा बिजनेस है मैंने बेच दिया, मेरा कंट्रोल नहीं, पर मेरा मेरे अपने विचारों पर कोई दूसरा कंट्रोल करे, मुझे ही नहीं जानते तो इमेजिनेशन करेंगे, मेरे कर्म से कंट्रोल करना चाहेंगे, पर मैं कौन हूं दिखाई नहीं पड़ रही, कर्म दिखाई पड़ रहा है, करने वाली कौन? तो आज जो करने वाली है वो अपने आप को आप पे ही अपने कर्म से जेल में डाली हुई है, क्योंकि विज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है कि मैं शरीर से निहारी आत्मा हूं, पर उसके उसको अंदर एक्सप्लोर करे, अपने आप को रियलाइज करे, अपनी वैल्यू को पहचाने और सटल सटल होती जाए। अभी आप देखेंगे जो हमारा ये 5 तत्व का शरीर है, इसकी एनर्जी सटल धीरे धीरे होती है, ऐसे आत्मा की एनर्जी भी इन 5 तत्वों के पार की एनर्जी है, ऊपर वाला नीचे को ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। हमारी बॉडी में ग्रेविटी है, भारी है, अभी मैं ऊपर उठाऊंगी ना नीचे ही गिरेगी। आज क्या है कि ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है, अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, जबान पर भी कंट्रोल नहीं, आंखों पर भी कंट्रोल नहीं, पानी उस है उसके मैं उंगली डालूं उसको मैं ऐसे नहीं उठा सकती जैसे मैंने इस पत्थर को उठाया है, मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, वो बह जाएगा, चाहे बर्फ भी बन गई ना मैंने पकड़ी बह जाएगी, अग्नि हाथ में डायरेक्ट नहीं ले सकती, हवा मुझे टच कर रही है पर मैं नहीं टच कर सकती, हाँ पंख पर्दे हिल रहे हैं, हवा चल रही है, तो मेरा कहने का मतलब और आकाश पकड़ सकते हैं हम, साइंस जो है वो इनकी एक्सप्लोर कर रही है सटल्टी को, तो सोल को अपने अंदर के जो सटल्टी है उसका अपने आप ही इंजीनियर बन कर कर अपना साइंटिस्ट बनकर सेंस चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं, तो जो मेरे पांच प्रकार का मेरा मेरा है, पर्सनल प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी, शेयर जो शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और साथ साथ मेरे विचारों की प्रॉपर्टी, मेरी आइडियाज, मेरी इन्वेंशन, मेरे एक्सप्लोर करने का, तो उसको हम सोल कॉन्शियस होंगे तो अपने अपने अंदर भी मास्टरी रहेगी, तो क्या है शरीर में रहते हुए इसकी मास्टर आत्मा है। आपने ये कभी नहीं कहा शरीर ने आत्मा छोड़ी, बोला क्या बॉडी लेफ्ट सोल, किसने छोड़, सोल लेफ्ट द बॉडी। तो अंदर की जब इनर मास्टरी का मतलब है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन को एक्सप्लोर करने वाले, क्योर करने वाले, एलिमेंट्स को अपलिफ्ट करने वाले, इम्प्रूव करने वाले, वो साइंस हमारे पास, भारतवासी एक्चुअली ज्यादा क्लेवर ब्रेन वाले हैं, ऑनेस्टली है ये, विदेश में बेशक एक्सप्लोर होता है परंतु असली जो दिमाग है, भारतवासी एक बारी जाए विदेश में जो सीख के आया यहाँ पर 10 गुना ज्यादा अच्छा बनाएगा, क्यों, कि उनके पास लगन है, उनके पास समझ है, उनके पास परिवार की भावना है, उनके पास अपलिफ्टमेंट है, तो दोनों काम करते हैं। जैसे कहा जाता है विज्ञान ज्ञान के बिना नेत्रहीन है, और जो है जिसको आध्यात्मिकता अथवा भक्ति कहते हैं वो साइंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, लंगड़ा है, एक कॉमन कह सेइंग है, एक दो को सपोर्ट करने वाली। तो परमात्मा कहते हैं विज्ञान मीन्स जो आत्मा का ज्ञान है इसको मोर एक्सप्लोर करो। लाइट तक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाई लाइट ईयर्स, एनर्जी इज लाइट, लाइट इज एनर्जी, तो शरीर में से कौन सी एनर्जी निकल गई, लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। तो लाइफ जब तक आत्मा शरीर में थी तो लाइफ थी, आत्मा निकल गई तो लाइट की जो आयु लिमिटेड हो गई। तो वो आत्मा जो इनर मास्टरी सेंस ऑर्गन पर, फिजिकल भी और वातावरण पर भी और प्रकृति पर भी कर सकती है, वो है तीन शक्ति। जैसे एटम जो हमें एनर्जी है, ऐसे आत्मा में भी आत्मा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं। तो आत्मा में मन बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा एनर्जी है, शरीर चला गया, शरीर छोड़ा आत्मा ने, हार्ट तो पड़ा है पर दिल फीलिंग्स नहीं है, मन नहीं है। मन का काम है क्रिएट करना, मन का काम है मैप बनाना, इन्वेंट करना, विचार करना। अच्छे करो विचार, बुरे विचार करो। वो दूसरी है बुद्धि। डेड बॉडी में ब्रेन पड़ा हुआ है, बुद्धि नहीं है। साइंस ने बॉडी को लिए एक्सप्लोर कर लिया है पर सोल को नहीं कैच कर सके, क्योंकि वो मेटाफिजिकल एनर्जी है। ह्यूमन में बीइंग के पास लिविंग एनर्जी है, कांस्टेंट एनर्जी है, इम्प्रूवमेंट उसके आधार पर है। तीसरी चीज, बॉडी पड़ी हुई है, ऑर्गन्स हैं पर उसका कैरेक्टर नहीं है। अब बहुत अच्छा था, बड़ा वाइज था, अरे बिगेस्ट साइंटिस्ट था, बिगेस्ट इंजीनियर था, बिगेस्ट आर्किटेक्ट था हमारे शहर में, बड़ी पोजीशन वाला था। कौन था उसका हमने क्या किया? मेरा हस्बैंड, मेरी बहन, मेरी वाइफ, वो कहां कर दिया हमने उनको? जला दिया। अपने रिश्तेदार को ऐसे जिंदा जला सकते हैं क्या? धूमधाम से अच्छी तरह से रिश्तेदार सब आएंगे, दूर से, विदेश से भी आएंगे क्रिमेशन के लिए। किसको जलाया? बॉडी को जलाया। तो रिश्ता वास्तव में आत्मा का आत्मा से है, और उसका आत्मिक रास्ता ठीक रहे, मिलाप ठीक रहे, वो जब हम आत्मा अपने को आत्मा निश्चय करें और मन के संकल्प शुद्ध बनाए, तो बुद्धि में ये ज्ञान रहे कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, तो गॉड को ऑल माइटी कहते हैं, ऑल पावरफुल कहते हैं। तो ऑल माइट, ऑल पावर, कोई फिजिकल कंट्रोल किसी चीज से नहीं, पर अभी ये कंट्रोल भी जनरेटर का कनेक्शन है, मेन पावर हाउस का कनेक्शन है, तो ये साउंड काम कर रहे है। अगर इसका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, डिवाइस तो है, एक्शन नहीं है। तो हम आत्मा को अगर माइट भरनी है अपने में, तो यहां राजयोग सिखाया जाता है। सेल्फ मास्टरी के लिए सिर्फ फिजिकल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की बात नहीं है, जो मन के आत्मा के ऑर्गन्स है उसको डिसिप्लिन करके राइचियस वे में कर्म करें, कर्म योगी बने। उसके लिए फिर डिवाइन वर्चुस चाहिए, उसको एक्सप्लोर करें। जितना जितना हमारे में पेशेंस होगी, एंगर कम होगा। जितना हमारे में डिटैच्ड ऑब्जर्वर होंगे, तो सिचुएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ऑब्जर्वर होकर के एक्टिव एक्टर बनेंगे, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के रहेंगे। मुझे मोहन भाई जी ने कहा था, समय थोड़ा है परंतु प्लीज आप ज्यादा बोलना, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है, इसलिए आप 20 मिनट बोलना। तो मैंने, उन्होंने मुझे सवेरे बता दिया था, तो मैं इसीलिए ज्यादा बोली। मेरे को खास आके बोला सवेरे यहाँ की सभा में कि दीदी 7 मिनट में नहीं खत्म करना, 10 मिनट में नहीं खत्म करना, 20 मिनट।
आदरणीय दीदी जी का उमंग, उत्साह और ज्ञानवर्धक बातें, हमारा मन तो है कि हम सुनते रहे।
मैं मालिक हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। शेर का बच्चा बकरी नहीं होता, शेर का बच्चा शेर होता है। परमात्मा ज्ञान, शांति, प्रेम पवित्रता आनंद सत्यता का प्रॉपर्टी उनके पास है और ये प्रॉपर्टी मुझ आत्मा में है क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ और इसका नाम है योग। उसके लिए आप कैसे सीखो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को रबड़ उतारेंगे, वायर से वायर कनेक्ट करेंगे तो करंट आएगा। और वो आप इंजीनियर कैसे बने, आप इलेक्ट्रिशियन कैसे बने, साइंटिस्ट टीचर कैसे बने, वो आपको जो सुबह के सेशन है ना उसमें सिखाया जाएगा। इतने में ही मैं पूरा करती हूँ। ओम शांति।
आप सोच सकते हैं 85 इयर्स की उम्र में ये उत्साह, ये उमंग और इतना जोश और इतनी प्यारी ज्ञानवर्धक लेकिन कितनी प्रैक्टिकल बातें हम दीदी जी से सुन रहे थे। मन तो हम सभी का है, सब ऐसे सुनने में मगन हो गए हैं, पर समय की सीमा है, इसीलिए दीदी जी को हम आज इतना सुन पाए। कोशिश करेंगे, मौका मिलेगा तो जरूर दीदी जी के अनुभव की बातें भी हम सुनेंगे, जो इस लगभग 60 वर्षों से इस संस्था में अपनी जो समर्पित जीवन के अनुभव है और 100 देशों से भी अधिक देशों की आप यात्रा कर चुके, तो कितना वृहद अनुभव होगा वो हम जरूर सुनना चाहेंगे दीदी जी से। अभी हम हमारे बीच आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी को आमंत्रित करते हैं, हम आपसे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुनना चाहेंगे। आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी,
गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। Respected dignitaries on the dais and my dear divine brothers and sisters just in front of me. The conference, as you know, is on inner mask for maximizing performance. It's a holistic conference. Most of the programs in this auditorium are of holistic nature. By holistic I mean it tries to cover all the aspects of life, mostly the major aspect, the physical, mental, social, spiritual, emotional and organizational aspects also. This particular conference is also trying to cover both the aspects of life, major aspects, the inner aspect and the outer aspect. Outer aspect means we all work in different organizations in different fields, and these, whether it is outside or the inside field, but both are as a matter of fact interconnected with each other, and this interconnection is very, very vital, very important and necessary. As I was telling yesterday, this is Harmony Hall. And that's why most of the programs are of holistic nature. Harmony, though we all wish harmony among various communities, various countries, and lot of varieties are there among all those, we wish harmony. But rarely we realize that the most important harmony is harmony within the self, harmony between our head, heart, and hand. This harmony is very vital. क्योंकि होता क्या है, अक्सर करके हम सोचते कुछ और हैं और वाणी में कुछ और आता है और कर्मों से हम हाथों के द्वारा कुछ और कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि हमारी इंटरनल हारमोनी हो और इंटरनल हारमोनी से हमारे ये दोनों एस्पेक्ट, इनर मास्टरी एंड आउटर परफॉर्मेंस, दोनों कवर हो जाते हैं। गीता में भी इसीलिए कहा है योग कर्मशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग दैट इज इंटरनल एस्पेक्ट एंड कर्म में कुशलता, जहां भी हम कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां पर बाहरी क्षेत्र में आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, व्हाट काउंट्स एक्चुअली द आउटपुट थ्रू अवर एफर्ट्स, और इंटरनल एस्पेक्ट उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। तो दीदी जी इस बात पर ही विशेष ध्यान खिंचवा रहे थे कि हमारा जो इंटरनल एस्पेक्ट है और इनर मास्टरी जो है, इनर मास्टरी का भी बड़ा अच्छा बताया, और आज सुबह भी आपने एक शिविर किया होगा, राजयोग शिविर डॉक्टर सविता बहन जी ने जो कराया। तो इनर मास्टरी मीन्स इनर, हम सब कैसे आत्मा है और आत्मा किस प्रकार से मन बुद्धि संस्कार आदि सहित है आदि आदि, वो सब दीदी ने भी उस पर प्रकाश डाला। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट काउंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, संपूर्ण प्रगति में कि हम करते क्या है, हमारा आउटपुट कैसा है, कितनी हमारी उन्नति है, कितना हमारा विकास हो रहा है देश का। और बाहरी विकास से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन आंतरिक विकास और बाहरी विकास दोनों में एक बैलेंस हो, दैट इज एक्चुअली बाय वर्च्यू ऑफ दिस हार्मनी बिटवीन अवर हेड हार्ट एंड हैंड, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि योग से हमारे कर्मों में कुशलता कैसे आए, एक पीक वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड याद रखने की हमें जरूरत है, एक एस्पेक्ट, एंड दैट इज बैलेंस, बैलेंस इन लाइफ। एंड वो बैलेंस जो है किस चीज का बैलेंस, क्योंकि वैसे भी शरीर है हमारा, शरीर भी बैलेंस में है, दोनों टांगे हैं, बैलेंस है, यथार्थ रीति से चल सकते हैं। शरीर में हर चीज का अगर बैलेंस होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, चाहे वेदर इट इज मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे फिजिकल, कोई भी बात हो। तो मैं यहाँ पर इस बैलेंस शब्द पर ही विशेष प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ही ये है, आप सब जो अलग अलग जगह से आए हैं, उस बैलेंस को हासिल करके यहाँ से जाए। और वो बैलेंस पर ध्यान खिंचवाते हुए मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हमारा ये शरीर है, वी ऑल नो इन अवर दिस साइंटिफिक फील्ड ऑफ लाइफ दैट लेफ्ट एंड राइट ब्रेन्स आर देयर इन अवर ब्रेन, टू एस्पेक्ट्स। द लेफ्ट ब्रेन बेसिकली डील्स विद द साइंटिफिक एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल, मैथमेटिकल एंड ऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वेयर एज द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्टली डील्स विद अवर स्पिरिचुअल एंड वैल्यू ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो आज आपने सुबह के शिविर में सुना, कैसे आत्मा, जिस पर बहन जी भी, दीदी जी भी ध्यान खिंचवा रहे थे, आत्मा कैसे प्रेम स्वरूप, शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, ज्ञान और शक्ति स्वरूप, ये सात गुण आत्मा के विशेष हैं। ये इनर एस्पेक्ट जो है, ये काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है हमारे आउटपुट के लिए। हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंट्री के लिए, तो इसीलिए दोनों का बैलेंस हो। और ये बैलेंस से क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट पार्ट, वी ऑल नो मोस्टली द लेफ्ट पार्ट, वी ऑल आर मोस्टली द लेफ्ट ओरिएंटेड मैन, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इसमें क्या कार्य करना है। तो वेयर इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्टली डील्स विद अवर अलर्टनेस, लेफ्ट ब्रेन अलर्टनेस, कितने हम जागरूक हैं, लेकिन उसके साथ साथ आवश्यकता जो है अलर्ट के साथ साथ रिलैक्स रहने की भी। अलर्ट हम होते हैं, कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाते। मोस्टली वी से दैट ओ सो मच टेंशन इज देयर, लॉट ऑफ वर्क, वी आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, अगेंस्ट द आउटपुट, व्हाट वी हैव टू जनरेट, व्हाट वी हैव टू गिव टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अलर्ट के साथ साथ रिलैक्स भी कैसे रहें, ये दोनों कर्म योग हमें सिखाता है। अलर्ट पार्ट दैट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड द रिलैक्सेशन कनेक्टेड विद द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो अलर्ट के साथ साथ रिलैक्स भी हो, ये टेक्निक एक तो आपको यहां सिखाई जाती है। दूसरी चीज, हम कहते हैं वी आर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम, वेरी बिजी, सुबह से लेकर रात तक ये काम है, ये काम है, लिस्ट पूरी होती है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ द लाइफ इज बिजी तो रहें, लेकिन बिजी के साथ हम इजी कैसे रहें, कैसे हल्के रहें, हल्के रहकर काम करें, And that easy part actually is directly connected with the right part of the brain, which actually is connected the brain, the medical, this value aspected of life. जो आपको आज बताया गया होगा शिविर में सुख शांति ज्ञान और शक्ति की बातें जो बताई जा रही थी. तो अलर्ट एंड रिलैक्स, बिजी एंड इजी. थर्ड एस्पेक्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज वी हैव टू बी केयरफुल इन अवर वर्क. राइट, होना भी चाहिए केयरफुल. लेकिन केयरफुल के साथ साथ ब्यूटी तभी है जब चीयरफुल भी हो. केयरफुल तो हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन खुशी से, आनंद से, प्रेम से, सबके साथ मधुर संबंधों के साथ रहते हुए चीयरफुल होके कार्य करें हैं, तो ये रियलिटी कर्म योग प्रदर्शित करती है. कर्म भी, केयरफुलनेस भी एंड चीयरफुलनेस भी. एक चौथा एस्पेक्ट है इन्वॉल्व्ड. जितना कर्मों में हम इन्वॉल्व रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी. अनलेस वी आर फुली इन्वॉल्व विद अवर हेड माइंड, पूरे दिमाग, दिल दिमाग के साथ, तो इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी. बट इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डिटैचमेंट, इंटरनल डिटैचमेंट. कई बार क्या होता है, इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं, लेकिन डिटैचमेंट means हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो किसी वर्क में. ऑर्गेनाइजेशनल हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, सब हो, लेकिन जहां ऐसा सेल्फिश इंटरेस्ट आता है, जहां ऐसी बात आती है अपने परिवार से लगती हुई, जो अधिकतर आजकल हम मोस्टली कई क्षेत्रों में देखते हैं, तो वो अगर डिटैचमेंट नहीं होता है, मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा भी इसमें रेज करे आदि आदि, तो उसके रिस्पेक्ट हम देखते हैं. पॉलिटिकल क्षेत्र में तो अक्सर देखने में आ ही जाता है, लेकिन पॉलिटिकल के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है. तो दिस बैलेंस इज वेरी मच नेसेसरी, डिटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट. साथ साथ एक इसमें है, फर्मनेस इज रिक्वायर्ड, डिसीजन टेकन. ये कहा जाता है इवन ए रॉन्ग डिसीजन इज बेटर देन इनडिसीजन. मिलिट्री में खास बताया जाता है डिसीजन लेना, लेकिन अक्सर करके हम कई बार अपने को त्रिशंकु की स्थिति में पाते हैं, ये कार्य करें या ना करें, ऐसा करें या ऐसा करें. दिल एक बात बोलता है, दिमाग दूसरी बात बोलता है. दिल और दिमाग के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली जब दिल दिमाग के साथ जो हाथ हैं हम कर्म करते हैं, वो सेल्फिश इंटरेस्ट के, वेस्टेड इंटरेस्ट के भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो विच गोज मोस्टली अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट. तो इसलिए आवश्यकता ये है कि इनके साथ साथ हमारा फर्मनेस तो हो ही, लेकिन फर्मनेस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी हो. फ्लेक्सिबिलिटी जीवन में आवश्यक है. जल का उदाहरण देते हैं, जल फ्लेक्सिबल होता है, अपने को सेट करता है एज पर सिचुएशन. जल बहता जाता है तभी वो आगे बढ़ता जाता है. क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टमेंट पावर होती है, इसलिए वो सदैव आगे ही बढ़ता है. और जीवन में अगर हम भी अगर आगे बढ़ने का लक्ष्य अगर रहता है, तो उसको हासिल करने के लिए आवश्यक है फर्मनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों चीजों का बैलेंस. फर्दर इज बैलेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, नम्रता. अक्सर करके कहा जाता है विद्या या शक्ति, धन, ये जितना अधिक बढ़ता जाता है, मनुष्य का अहंकार भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, बैलेंस नहीं रख पाता. तो इसीलिए आवश्यकता ये है एक ये बैलेंस. और इनके साथ साथ फर्दर व्हाट इज द बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ. लव एंड लॉ, प्रेम पूर्वक हमारा व्यवहार, नम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक वो हो, लेकिन उसके वो होगा राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन. लेकिन लॉ पार्ट, द डिसिप्लिन पार्ट, वो भी जीवन में अत्यधिक आवश्यक है. तो डिसिप्लिन एज वेल एज लव, ये दोनों का प्रॉपर बैलेंस रहे, जिससे सदैव प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहें और उस बैलेंस के लिए आवश्यकता है दोनों का बैलेंस. इट इज एक्चुअली कंट्राडिक्टरी थिंग्स जितनी आपको बताई अधिकतर कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन कंट्राडिक्टरी होने के बावजूद भी ये अगर दोनों को मिला करके हम चलते रह सकते हैं तो ये जीवन में सफलता के लिए. और उसी उद्देश्य से यही कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि एक तरफ ये सिखाएगी मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस, कैसे हमारा आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट किसी भी क्षेत्र में है, बिजनेस में है, खेती में है, किसी में, उसमें आउटपुट बढ़े, देश विकास की ओर बढ़े, और साथ ही साथ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज है मैक्सिमाइजिंग इनर मास्टरी, हमारा सर्व स्वयं पर नियंत्रण हो, जैसा दीदी बता रहे थे सेल्फ इंटरेस्ट. तो सेल्फ यानी आत्मा, तो ये कहना तो हमारी भारतीय संस्कृति में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं आत्मा आत्मा की बात, लेकिन बड़ा मुश्किल समझते हम कहते हैं, जानते तो हम क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आ जाता है, मन क्या करें बड़ा चंचल है, हम चाहते हैं थोड़ा दो मिनट भी ध्यान में बैठना चाहते हैं, मन भाग जाता है जहां पर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है आदि आदि. तो इसीलिए इसके ऐसे जीवन में लगभग 15-20 बैलेंसेज हैं, और अक्सर करके क्या होता है किसी ने हमारा बेइज्जती कर दी, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट कार्य कर दिया, बस हमारे मन के अंदर सूक्ष्म में बदला लेने की भावना आ गई है. ये इंस्टीट्यूशन सिखाती है बदला न लो लेकिन बदल के दिखाओ, वो आती है क्षमा भावना से. दूसरे का हम जानते हैं ये वीकनेस है, ये कमजोरी है, ये इसकी नेगेटिविटी है, इसने ये कार्य हमारे अगेंस्ट में किया है, लेकिन ब्यूटी तब है जब हम उसे अंदर से क्षमा कर दें. अगर क्षमा अगर हो जाता है, ये दूसरे के लाभ के लिए नहीं है, ये मेरे अपने लाभ के लिए ज्यादा है, क्योंकि जहां जहां कुछ क्रोध घृणा ईर्ष्या की भावना बदला लेने की भावना नेगेटिविटी होंगी, तो जैसे कल भी बताया जा रहा था नेगेटिविटी मोस्टली हमारी हेल्थ के अगेंस्ट भी जाती है. तो ये जो बैलेंस है, बस ये कॉन्फ्रेंस का हमारा लक्ष्य ये है कि इनर पार्ट में और एक्सटर्नल पार्ट में हम कैसे बैलेंस मेंटेन करके चले हैं, जिससे एक तरफ प्रगति की राह पर बाहरी प्रगति प्रगति उधर की तरफ बढ़ते चले, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनर कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता रहे, और जहां दोनों का बैलेंस होगा वहां सफलता सुख शांति वो जीवन में आएगी ही आएगी, पीछे दौड़े के ही आएगी, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदा सिखाता है. इसलिए मैं इसमें और अधिक समय न लेकर के, ये जब दोनों का बैलेंस होता है तो सबसे बड़ी प्राप्ति होती है एकाग्रता की, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड. और जहां एकाग्रता होती है, बचपन में से हमने एक वो तो खेल तो करा ही है, सूर्य के सामने कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, किरणें एकाग्र हो जाती हैं, वो जल जाता है. शक्ति का एकाग्र, हम सब लोग शक्ति के पुंज हैं, शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां हमारी चारों तरफ बिखेरी हुई हैं, उस कहानी की तरह जैसे किसी पिता ने बच्चों को कहा अलग अलग लकड़ियों का जब बंडल बना के दिया वो तोड़ नहीं सके, और जब अलग अलग कर दिया तो सब टूट तोड़ सके. तो आवश्यकता इस बात की है कि हम एकाग्रता कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जितना जितना अधिक कर सकेंगे, इन दोनों के समन्वय से, आंतरिक जो इंटर इनर मास्टरी है और जो परफॉर्मेंस एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, वो दोनों जब बैलेंस होकर चलेंगी तो जीवन में हमारे बहुत सुख और शांति की प्राप्ति होती रहेगी. देयर इज नो एंड ऑफ इट. लेकिन मैं एक बात बस बताना चाहूंगा, हम अपना ही नहीं बल्कि अपने कार्य क्षेत्र का, क्योंकि जैसी हमारी वृत्ति होती है, थॉट पावर होती है, वृत्ति से हमारा वाइब्रेशन बनता है, वृत्ति से हमारा ऑरा डेवलप होता है, और जितना ऑरा डेवलप होता है वैसा ही हमारा वायुमंडल बनता है. साइंटिस्ट हैज प्रूव्ड, यस्टरडे आई वाज टेलिंग, आई डोंट रिमेम्बर, किरलियन फोटोग्राफी, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. द किरलियन वाज ए साइंटिस्ट ऑफ रशिया St. Petersburg, where I had also the opportunity to go there. और वहाँ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक एक पार्ट का वो जब ऑरा लेते हैं, एंड सम टोटल ऑफ ऑल द ऑरास आर जो देवी देवताओं या व्यक्तियों के पीछे यहाँ दिखाया जाता है, तो वो ऑरा वहाँ पर बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, किरलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी ऑरा, तो वो हरेक का ऑरा लेते हैं। और कल मैं इसी उद्देश्य से बता रहा था कि और कभी भी आपका रशिया जाना चाहे जाना हो या वहाँ के बारे में, और तो वो किरलियन इंस्टीट्यूट में अपना ऑरा फोटोग्राफी करते हैं, तो व्यक्ति का ऑरा भी, और हर पार्ट का ऑरा अलग अलग होता है, तो वो ऑरा से हम अपना कंसंट्रेशन पावर को किस प्रकार से और एनहेंस, क्योंकि वो केवल बीमारी वर्तमान बीमारी का ही नहीं बताता, बल्कि क्या बीमारी निकट भविष्य में होने वाली है, शारीरिक मानसिक और साथ ही साथ सामाजिक, हमारे संबंधों में कैसे प्रेम नम्रता आदि आ जाए, तो उनके द्वारा ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकें, सच्चे कर्म योगी बन के हम जा सकें, लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ ब्रेन का बैलेंस रख के यहाँ से जब हम जाएं, तो हम महसूस करके जाएं, यस आई एम गोइंग विथ समथिंग वेरी वेरी जो पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसको लेकर के मैं जा रहा हूँ, और अब मेरे जीवन में पूरे सब रास्ते खुले हैं, स्पष्ट हैं। इस अनुभूति के साथ आप सब लोग जाएं और जीवन में इस शक्ति और शांति की अनुभूति करते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।
भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल की बात भाई साहब कर रहे थे। एक साइंटिस्ट जिन्होंने ऑफिस के बाहर लिखकर लगाया डू नॉट डिस्टर्ब, और 5 मिनट बाद खुद ही आकर पूछ रहे किसी ने डिस्टर्ब तो नहीं किया। हम सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी आंतरिक हमारी ऊर्जा को जागृत करने की बात, और इन सबको करने के लिए जो हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि हमें ये सिखाती है कि बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारी भारतीय संस्कृति कल्चर है, बड़ों के आशीर्वाद लेकर हम हर कार्य करते हैं। हमारे बीच हमारे इस ईश्वरीय परिवार के जो सबसे बड़े, यानी हमारे संस्था के जो चीफ है, परम आदरणीय मोहिनी दीदी जी, जो हमारे बीच उपस्थित नहीं है इस समय, वो अमेरिका में है, परंतु जब आप सभी के आने की खबर उन्हें दी गई, समाचार मिला, तो उन्होंने बड़े दिल से अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं, शुभाशीष आप सभी के लिए बहुत दिल से भेजे कि आप सभी अपने जीवन में अध्यात्म को सम्मिलित करें, और साथ साथ जैसा कहा जाता है हमारी भगवद गीता में कहा गया, योग कर्मेशु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है, और यहाँ हम अपने परफॉर्मेंस यानी कर्म के कुशलता की ही बात कर रहे हैं। तो दीदी जी ने कहा कि योग को अपने जीवन में जरूर शामिल करें, क्योंकि जब योग को शामिल करेंगे तो कर्म को श्रेष्ठ बनाने में मेहनत नहीं लगेगी, यानी तब हमारा परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो सकता है। तो इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें कि अगले आने वाले 2 दिनों में हम यहाँ ज्ञान की भी अनुभव की भी बातें सुनेंगे, साथ साथ मेडिटेशन पर भी ध्यान देंगे, उसका भी अभ्यास करेंगे, जैसा मॉर्निंग मेडिटेशन के बारे में भी आपको बताया गया है, और खास उनके साथ ही हमारे संस्था के एडिशनल चीफ आदरणीय मुन्नी दीदी जी, वो भी हमारे बीच किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उन्होंने भी अपने आशीर्वाद, अपने शुभाशीष सभी के लिए भेजे हैं कि इनर मास्टरी को अच्छी तरह से समझे और उस पर अपनी पूरी पूरी कमांड हासिल करें। इनर मास्टरी को हमारे आदरणीय भाई साहब ने, आदरणीय दीदी जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एक छोटी सी एक्टिविटी से हम इस बात को समझ सकते। आप सभी अपना राइट हैंड ऊपर करें, नीचे करें, लेफ्ट हैंड ऊपर करें, नीचे, राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, सामने देखिए। अब 1 मिनट ध्यान परमात्मा में लगाइए। अब अब बताइए किसका मन तुरंत परमात्मा में लग गया, ध्यान लगा? अच्छा, काफी सारे हैं। देखिए, हमने अपनी आंखों को और हाथों को जो भी कमांड दिया तुरंत उसने रिस्पॉन्ड किया, किया रिस्पॉन्ड, ये मास्टरी है हमारी। लेकिन मन को हमने कमांड दी, क्या वो तुरंत उसे रिस्पॉन्ड कर पाया? ये इनर मास्टरी है, हमारे आंतरिक जो रिसोर्सेस है, हमारे जैसे दीदी ने कहा, भाई साहब ने कहा, मन बुद्धि और हमारे संस्कार, इन पर हमारी मास्टरी होना जरूरी है, जो हम यहाँ सीखने आए हैं इस आध्यात्मिक भूमि पर। तो इस पर हम सभी बहुत गौर करेंगे। अब मैं हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूंगी योगा ट्रेनर जो अहमदाबाद से हमारे बीच आई है, हमारी मीठी डॉक्टर दामिनी बहन। हमारा ये जो पूरा इस कॉन्फ्रेंस का थीम है, इस थीम को साथ में लेकर एक बहुत सुंदर गीत के भाव में पिरोकर हमारे बीच वो लेकर आई है, तो हम सभी तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर दामिनी बहन का।
ओम शांति। जब विज्ञान थक जाता है उत्तर देते देते, जब सुविधाएं मन को सुकून न दे पाए, तब अंतरात्मा से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, ना युद्ध से, ना अधिकार से, ना विज्ञान के अहंकार से। विश्व बदलेगा जरूर, परंतु स्वराज्य और अध्यात्म के आधार से। इसी भाव को लेकर आपके समक्ष ये थीम सॉन्ग प्रस्तुत कर रहे हैं।
आध्यात्म द्वारा विश्व का निर्माण करते हैं,
शुक्रिया दामिनी बहन का, बहुत ही मधुर सुंदर गीत हमारे बीच थीम पर प्रस्तुत किया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेशन का विधिवत कैंडल लाइटिंग के द्वारा उद्घाटन करेंगे। उससे पूर्व मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगी। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी खास करके पर्यावरण पर भी काफी ध्यान देते हैं और उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हमारी विंग के द्वारा पर्यावरण रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में 6 अभियान निकालने का एक प्रपोज्ड प्लान बनाया है। उस प्लान के अनुसार हमारे पूरे भारत में 6 अभियान निकलने हैं। पहला माउंट आबू से नागपुर, रायपुर से जबलपुर, दिल्ली से बनारस, भुवनेश्वर से गुवाहाटी और चेन्नई से हैदराबाद, और एक पानीपत से जम्मू जो निकल चुका है ये कैंपेन, और बाकी कैंपेन आगे ऐसा लक्ष्य है कि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सेवा का कार्य प्रगति पर किया जाए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें कुछ बातें बताई हैं जिसमें हम देखते हैं कि डीजल और भी गैस पानी इन सब चीजों की काफी कमी की वजह से काफी सारे प्रोग्राम जो है आगे स्थगित किए गए कुछ समय के लिए। तो हालांकि ये हमारे कैंपेन जो है ये हमारा लक्ष्य है, परंतु आगे इस पर विचार चल रहा है। फिर भी इन कैंपेन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी को करना था जो किसी कारण नहीं हो पाया, तो आज हम यहाँ पर क्योंकि हमारा इतना सम्माननीय मंच है और आप सभी भी पूरे भारत और नेपाल से यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस कैंपेन का हम विधिवत शुभारंभ भी करेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मंचासीन सभी अतिथियों को कैंडल लाइटिंग के लिए। इसके साथ ही मैं और कुछ अतिथियों के नाम ले रही हूँ जो नीचे आप सभी के लिए दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो वाइस चेयरपर्सन आशा दीदी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। उसके पास भ्राता पारसनाथ प्रजापति, आप साबरमती से हैं, भ्राता कमल कुमार अग्रवाल जी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, साथ ही बहन दीपिका उपाध्याय, भ्राता अजय खुराना जी, भ्राता अमनजोत कौर जी चीफ जनरल मैनेजर ONGC बरोड़ा, भ्राता एनपी सिंह जी आप भी बरोड़ा से हैं, भ्राता गौरव दास जी आप भी बरोड़ा से हैं, भ्राता दिवाकर अग्रवाल जी फॉर्मर DDG CPWD दिल्ली से, भ्राता कमलनाथ कांडे जी भिलाई से एडिशनल कमिश्नर, आप सभी नीचे जिनका मैंने नाम लिया आ जाएं और दीप प्रज्वलन में साथ देंगे। भ्राता जितेंद्र प्रसाद जी रिलायंस से, सुधीर कुमार जी भ्राता जनरल मैनेजर आप जिंदल से, मानवता का साथ रहे, हर्ष बी मैनेजिंग डायरेक्टर आप भी, निर्माण में मूल्यों का विश्वास रहे, भ्राता संजय पटेल जी, दिलीप भाई पटेल जी, आप सभी से भी अनुरोध है नीचे आकर दीप प्रज्वलन में साथ, और आप सभी सभा में सभी खड़े होकर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेंगे, आप सभी भी साथ देंगे इस दीप प्रज्वलन में। हर जीवन में फूल खिले संसार हो, दीपक की पावन ज्योति से इसके बाद कैंपेन की लॉन्चिंग होगी, जो कैंपेन में हमारे बहनें और भाई जो जाने वाले हैं 6 कैंपेन का, उनको मैं मंच पर मैं मंच से अनुरोध करती हूँ कि आप अभी यहीं खड़े रहेंगे। सभी हमारे कैंपेन में जाने वाले जो भाई और बहनें, मैं जिनका नाम ले रही हूँ, मंच पर आ जाएंगे। आप सभी को कलश और झंडे देकर इस कैंपेन का लॉन्चिंग किया जाएगा। अस्मिता बहन, ज्योति बहन पानीपत से, अमृता बहन, डिंपल बहन, गिरजा बहन, निधि बहन, आप सभी मंच पर आ जाएंगे। आदरणीय भारत भूषण भाई जी, पीयूष भाई तो है ही, आप भी सामने आ जाएंगे। अनुराग भाई आबू से, हमारे विंग से हैं, श्रीनिवास भाई, नरेंद्र भाई बरोड़ा से, देवेंद्र भाई हिम्मतनगर से, हमारे 6 भाई और 6 बहनें इन 6 कैंपेन के लिए हैं।
शांति प्रेम और योग बरसे, सुखमय संसार हो।
मंच से अनुरोध है कि आप सामने ही आए सभी। आदरणीय करुणा भाई जी, दीदी जी, हमारे भाइयों को और बहनों को झंडे और कलश देकर इस और पट्टे पहनाकर इन कैंपेन की लॉन्चिंग करेंगे हम सभी।
शक्ति के वरदान से हर जीवन मुस्काए, वैज्ञानिक अभियंता वास्तु कार मिल, नवयुग धरती पर लाए। विज्ञान हो या निर्मन का रास्ता, हर सपना सच हो सकता, जब मन में हो शांति और सोच में हो दिव्या दृश्यता। इंजीनियर के नए इरादे, शक्ति से परफॉर्मेंस को वो बढ़ाए, आत्मा विश्वास और योग बल से नई ऊंचाइयां पाए पाए। मन हो स्थिर और दृष्टि पवित्र, हर क्यों नौटी आसन बने, ज्ञान और फिटल पावर से हर जीवन महाबन बने।
बालोतरा से अस्मिता बहन, जिनको ये कलश, ये जिम्मेवारी दी जा रही है।
आँखों में है स्वर्णिम भारत,
साथ ही आदरणीय भारत भूषण भाई जी सामने आ जाएंगे। ज्योति बहन पानीपत से, पीयूष भाई जी, अमृता बहन, डिप्पल बहन बड़ौदा से, श्रीनिवास भाई, गिरजा बहन दिल्ली से, निधि बहन, नरेंद्र भाई बड़ौदा से और देवेंद्र भाई हिम्मतनगर से। अनुराग भाई हमारे विंग ऑफिस से,
कहने वाले कहते हैं पर करके हम तो दिखाएंगे
दिखाएंगे हाँ दिखाएंगे।
मूल्यवान बन मूल्यों की दुनिया हम नहीं बनाएंगे
बनाएंगे हाँ बनाएंगे।
आने वाली सुबह प्यारी दिन भी प्यारा।
हमारे विंग ऑफिस से दिनेश भाई, दिनेश भाई स्टेज पर आ जाएंगे।
प्यारी दिन भी प्यारा प्यारा ये संकल्प हमारा दृढ़ संकल्प हमारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत हाथों में जग सारा जग सारा जग सारा। शिल्पी अपने हाथों से कितने इतिहास गढ़े
इतिहास गढ़े।
मानवता की सेवा के हित हरदम अपने हाथ बढ़े
हाथ बढ़े हाथ बढ़े।
आज हमारी
ये एक चाबी है किसी फोर व्हीलर की जिसका नंबर है GJ0IWJ1971। स्विफ्ट डिजायर है तो जिनकी भी ये गाड़ी हो इनकी चाबी स्टेज के पीछे से ले लेंगे।
संकल्प हमारा दृढ़ संकल्प हमारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत हाथों में जग सारा जग सारा जग सारा। विचार और सदाचार का देना है हमको
सहयोग।
राजयोग का राज यही है करे परम पिता से योग।
बहुत ही सुंदर दृश्य हम सभी के सामने है। शिव ध्वज लहरा रहा है और सभी अपनी जिम्मेवारियों का कलश और अभियान में निरंतर बढ़ने का जज्बा लेकर पट्टे पहने हुए और हमारे अतिथिगण इनका भी साथ है सभी का। आप सभी की शुभकामनाएं हैं तो उम्मीद है कि जो क्राइसिस चल रहे हैं अभी इस समय वो क्राइसिस जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो ये अभियान सफलतापूर्वक जरूर पूरे होंगे। मुझे लगता है आपकी तालियां आपका ये शुभकामनाएं होंगी तो जितनी जोरदार तालियां उतनी हम समझेंगे कि आपकी भी इच्छा है कि ये अभियान सारे ही सफल हो। मंच का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन की प्रयोगशाला में आग लग गई। उनकी उम्र उस समय 67 इयर्स के लगभग थी और लाखों का नुकसान हो गया था, लेकिन वे जरा भी घबराए नहीं बल्कि उन्होंने अपने बेटे को कहा जाओ अपनी माँ को बुलाकर ले आओ क्योंकि ये दृश्य फिर देखने नहीं मिलेगा। फिर वो शांत होकर बोले हमारी सारी गलतियां आज जल गई और हम एक नई शुरुआत करेंगे। एक्चुअल परिस्थिति मायने नहीं रखती है, उस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है, महत्व रखती है और यही इनर मास्टरी है कि परिस्थिति कैसी भी हो पर स्थिति आपकी हमेशा अचल अडोल बैलेंस वाली बनी रहे। और हमारे बीच एक ऐसी ही हस्ती उपस्थित है जो ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो सदैव अनिश्चितता एवं हलचल भरी है, लेकिन आप अपने जीने का अंदाज बड़ा ही कूल रखते हैं। आप सरल शांत एवं संतुलित व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा न्यू दिल्ली माननीय भ्राता हरिवंश जी आज हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है। हम सभी आपको सुनना चाहेंगे आदरणीय भ्राता जी।
इस ईश्वरीय परिवार में मौजूद मंच पर और मंच के सभी नीचे मौजूद लोगों को मेरा प्रणाम। मेरे बोलने के पहले आपने आदरणीय राजयोगिनी वीके सुदेश दीदी जी को सुना, उनकी विद्वतापूर्ण बातें, अध्यात्म की बड़ी गहराई और मर्म वाली बातें, फिर इस आयोजन की प्रासंगिकता, यह इनर बैलेंस क्यों चाहिए, इस पर बहुत सुंदर राजयोगी मोहन सिंघल जी ने अपनी बात रखी। और यहां अनेक मंच पर और मौजूद लोग हैं और देश भर से आए ब्रह्म कुमारीज के सम्मानित यहां मौजूद प्रतिनिधिगण, देश के विभिन्न हिस्सों से आए वरिष्ठ अभियंता, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं कुछ कहूं उसके पहले जिन लोगों से आपने बहुत सुंदर अभिनंदन के संदर्भ में सुंदर गीत सुने और जिन बच्चियों ने बहुत उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत किया, उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही अहमदाबाद से आई दामिनी बेन को आपने सुना, उनके संगीत को सुना, उन्हें भी बहुत बहुत आभार। व्यक्तिगत तौर पर इस ब्रह्म कुमारी संस्थान के परिसर में आकर मुझे निजी तौर पर प्रसन्नता है। मैं राजनीति में आने के पहले लंबे समय तक पत्रकारिता में था, तब से न जाने कितने निमंत्रण यहां आने के लिए आए, पर वो शायद मुमकिन नहीं हो सका। पहली बार मैं निजी कामों से यहां माउंट आबू आया और मुझे संयोग मिला आपके बीच मौजूद होने का। विज्ञान की प्रगति आज की तारीख में पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया एक गांव बन चुकी है और इस गांव बनी दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण जिस स्थिति है कि मनुष्य के अंदर का संतुलन भंग हो गया और यही इस पूरे आयोजन का मुख्य विषय है। जो हमारे राजयोगी सिंघल जी ने कहा कि हम बैलेंस कैसे, आंतरिक बैलेंस को कैसे स्थापित करें, पर इस विकसित होती दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई की दुनिया में जो सबसे गहराई से प्रभावित चीज हुई है वो आंतरिक बैलेंस है। अब मैं आपको अपना पहला अनुभव बताऊं, यह विलक्षण संस्था है। इस संस्था ने दुनिया के 140 देशों में रोशनी बांटने का काम किया है, आध्यात्मिकता के शिखर पर ले जाने का काम किया है। और जब मैं प्रवेश किया आया तो बहुत सुंदर प्रदर्शनी यहां लगी हुई है, उसमें जीवन का मर्म है, मकसद है, हम क्यों आते हैं और क्या करते हैं। पर वहां भी हमने पाया कि हमारे जीवन का मर्म और लय कैसे टूट गया। हम भीड़ में इकट्ठे हैं, शोर कर रहे हैं और मोबाइल लेकर तस्वीर खींचने में लगे हैं और तरह तरह से एंगल बना रहे हैं। क्या यही हमारा जीवन संतुलन है? आज आप चले जाएं हवाई अड्डों से लेकर रेल से लेकर के क्रिटिकल जगहों पर जहां मना है कि तस्वीरें नहीं ले सकते, लोगों में होड़ लगी हुई है सिर्फ तस्वीरें लेने की। हम किस युग में जा रहे हैं? इस वैज्ञानिक प्रगति में, एआई के युग में हम जा कहां रहे हैं? और कम से कम ऐसी संस्थाओं में आकर जो हमें दुनिया में ज्ञान की रोशनी का मंच देती है, हमारे अंदर हम हैं क्या उन्हें जानने का माध्यम बनती है? वहां तो कम से कम हमारे अंदर इतना बैलेंस हो कि हम उसकी मर्यादा को, उसकी संवेदना को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके मर्म को समझ सके और उसका सम्मान कर सके। इतना तो कम से कम हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हम सब पढ़े लिखे लोग, ये मर्यादा होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से मंच का संचालन कर रही हैं बहन माधुरी बहन जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कई चीजें उन्होंने कही पर मैं कुछ कहूं इसके पहले मैं कहना चाहूंगा, आज के समय में हमारे जीवन में जो हम कहते हैं कि दुनिया गांव बन चुकी है, मैं बहुत पहले, आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले किताब पढ़ा, 30 वर्ष पहले कम से कम, द डेथ ऑफ डिस्टेंस, दुनिया की बड़ी मशहूर पत्रिका इकोनॉमिस्ट, उसकी पत्रकार ने लिखी थी कि दूरियों के खत्म होने का असर क्या होने वाला, कैसे दुनिया गांव बनने वाली है, प्रगति के वो मर्म आएंगे जिसकी इंसान कल्पना नहीं करता। ये 20-25 वर्ष पहले पढ़ा था। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार पत्रकार बनकर बंबई गया, बहुत अपने समय की विलक्षण पत्रकार थी धर्मयुग में, उन दिनों पढ़ा फ्यूचर शॉक की किताब आई थी एल्विन टॉफलर की, उसमें लिखा कि दुनिया इस कदर बदलने जा रही है जिसकी कल्पना आज आप नहीं कर सकते, और सचमुच हमारे जैसे लोग तब करते नहीं थे। पर इस विलक्षण प्रगति के बाद, इस अनप्रेसिडेंटेड स्पीड के बाद, कंपटीशन और चैलेंजेस के बीच इंसान कितना घिर चुका है। आज व्यक्ति की सफलता आकलन का आकलन उसकी उपलब्धियों से, उसने उसकी प्रोडक्टिविटी से, उसने और जीवन में क्या हासिल किया, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, उससे मापा जाता है, उसकी आंतरिक गहराई से नहीं मापा जाता। एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है और पूरी मानवता के सामने है, क्या बाहरी उपलब्धियां ही सफलता का मापदंड हैं? क्या इस निरंतर भाग दौड़ के बीच अपने भीतर की शांति, संतुलन और आत्मिक शक्ति को हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? उसी को एड्रेस करने के लिए इतना बड़ा आयोजन, इतना महत्वपूर्ण आयोजन आज यहां इस संस्था में हो रहा है। हकीकत है कि स्थायी और श्रेष्ठ प्रदर्शन केवल बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से ये आती है चीजें, जब मन शांत हो, विचार पॉजिटिव हो, भावनाएं संतुलित हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, तो काम केवल काम और दायित्व नहीं रह जाता, वो सहज जीवन का प्रवाह बनता है। आज दुनिया में नए नए शब्द हम इस प्रगति के दौर में सुनते हैं, बर्नआउट, तनाव, अवसाद, सबसे अधिक युवाओं में जो सुसाइड की रेट्स बढ़ रही है, ये प्रगतिशील समाज का द्योतक है। हम इनर बैलेंस खो चुके हैं, इस कारण ये समस्याएं हमारे सामने हैं, और उसी को स्टेब्लिश करने के लिए इतना महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है। इसलिए मैं बहुत सिंघल साहब को और यहां इस ब्रह्म कुमारी संस्था को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है। प्रोफेशनल एक्सेलेंसी हमें नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल एक्सेलेंस चाहिए। और ब्रह्म कुमारी जी ने पिछले 90 वर्षों से यही संदेश दिया है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है। आप बहुत उच्च कोटि की विलक्षण बातें आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी से सुना, और बहुत बड़े हमारे आध्यात्म के शिखर पुरुषों ने कहा है कि मैं, आप कभी आंतरिक रूप से बैठकर पूछे, मैं हूं कौन, क्या मैं वो नाम हूं जो हमें हमारे परिवार ने दिया, समाज ने दिया, हमारी पहचान दी, या कुछ और हूं, हु एम आई। रमण महर्षि ने इसमें गहराई पर इतना विचार किया और अनेक संतों ने इतना सुंदर ढंग से, हमारी आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी ने इसको बताया। तो हम अपने को इनर करें और समझे कि हम हैं क्या, और ये काम ये संस्था पिछले 90 वर्षों से हमें कह रही है कि इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक चेतन, दिव्य और शाश्वत आत्मा है। हमारे अंदर आत्मविश्वास, धैर्य, करुणा, निर्णय क्षमता, अगर हम अपने मूल वसूलों पर हैं तो स्वतः विकसित होते हैं। राजयोग मेडिटेशन इसी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। जैसा मैंने कहा, 140 मुल्कों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय काम कर रहा है, राजयोग और आध्यात्मिक प्रज्ञा के लिए काम, सकारात्मक बदलाव के लिए काम। आज पूरी दुनिया में 6000 से अधिक आपके सेवा केंद्र, 46000 से ज्यादा बहनें इसका संचालन कर रही हैं, और सबसे उल्लेखनीय बात कि बहनें संचालन कर रही हैं, जिस बात की हम चर्चा करते हैं, बहनें सामने आए तो कैसे बहनें अपनी करुणा से दुनिया बदल सकती हैं, वो काम इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। 25 प्रभाग इसके हैं जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों के बीच काम होता है, और सामाजिक सोशल कंसर्न की इशू अभी आपने देखा कि कैसे इकोलॉजी, पर्यावरण के लिए यहां से यात्रा निकली। इसलिए 90 साल पहले इस संस्थान के संपादक विलक्षण बाबा ने, ब्रह्मा बाबा जिन्हें हम संबोधित करते, उन्होंने जो बीज बोया उसका आप असर देखिए। इसलिए आज के कॉरपोरेट, प्रशासनिक और तकनीकी वातावरण में सेल्फ लीडर्स का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। जो व्यक्ति खुद को संभाल नहीं सकता, वो बड़े संगठन का नेतृत्व भी नहीं कर सकता, बड़े या छोटे कहीं भी। नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, नेतृत्व का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सही दिशा देना। जब व्यक्ति खुद संतुलित होता है तभी वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। यह सम्मेलन कर्मिक अवेयरनेस पर विशेष बल देता है। भारतीय दर्शन हमेशा कहता है हर विचार और शब्द के पीछे कर्म का प्रभाव होता है। आज निर्णय केवल तकनीकी या आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टि से भी होने चाहिए। जब ह्यूमन वैल्यूज निर्णय से जुड़ेंगे तब केवल भौतिक विकास नहीं होगा बल्कि मानवीय विकास भी होगा। हमें यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि सम्मेलन में ध्यान और व्यवसायिक उत्कृष्टता के समन्वय पर बल दिया गया है। सामान्यतः लोग ध्यान को केवल आध्यात्मिक अभ्यास मानते हैं, जबकि दुनिया के बड़े बड़े संस्थान, वैज्ञानिक और प्रबंधन विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि मेडिटेशन आज इंसान की एकाग्रता, निर्णय क्षमता, उसकी क्रिएटिविटी और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है, बढ़ाता है। ध्यान मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। यह हमें परिस्थितियों के दबाव में टूटने के बजाय शांत और स्थिर रहकर समाधान खोजने की ओर ले जाता है, उसकी शक्ति देता है। आज जरूरी है सफलता की दौड़ में हम अपने परिवार, संबंधों और स्वास्थ्य को न खो दें। जीवन में बाहरी उपलब्धियां तभी सार्थक है जब भीतर संतोष और शांति बनी रहे। आज समाज को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो सिर्फ कुशल न हो, बहुत इफिशियंट न हो, संवेदनशील भी हो, सेंसिटिव भी हो, जो सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्टाइज ही नहीं रखते हो बल्कि नैतिक रूप से भी अवेयरनेस हो। ज्ञान सरोवर जैसे शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण में, इस माहौल में आप इस विषय पर चिंतन और आत्ममंथन के लिए एकत्र हैं। प्रकृति के बीच यह स्थित परिसर हमें यह अनुभव कराता है कि मानव और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सामंजस्य और संतुलन का है। यह सराहनीय है कि यहाँ सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है आश्रम में। यह आध्यात्मिकता और सतत विकास के सुंदर समन्वय का उदाहरण है। विश्वास है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी वरिष्ठ अभियंता, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद यहाँ से सिर्फ नई जानकारियां लेकर नहीं लौटेंगे बल्कि नई ऊर्जा, नई दृष्टि, नए संकल्प के साथ लौटेंगे। आज भारत 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व मंच पर एक नई भूमिका में है। हमारा देश केवल आर्थिक और तकनीकी शक्ति बनने की दिशा में नहीं बढ़ रहा बल्कि वह वसुधैव कुटुंबकम और मानव कल्याण के शाश्वत दुनिया को शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा हमेशा यह कहती रही कि बाहरी परिवर्तन का आधार आंतरिक परिवर्तन है, जो आदरणीय दीदी से आपने सुना कि किस तरह से आध्यात्मिक विरासत से ही हम चीजों को आगे ले जा सकते हैं। विवेकानंद ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी क्योंकि हम आध्यात्मिकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। हमें याद रखना चाहिए जब तक मनुष्य खुद को न बदल दे तो न परिवार बदल सकता है, न परिवार बदले तो समाज बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति बदले, परिवार बदले, तब समाज बदले और समाज ही देश को बदलेगा और तभी दुनिया को बदलेगी। मैं दो तीन और छोटी चीजें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आज सबसे बड़ी चीज मैं आपको क्या बताता हूं, मैं एक ऐसे गांव से आता हूं, आप में से जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा मैं उनके गांव से हूं। एकदम नितांत देश के गांधी जी जो कहा करते थे समाज का अंतिम आदमी, उस तरह सबसे पिछड़ा गांव, एक फसल होती थी तब भी मैं देखता था अपन लोगों को, कोई सरकारी राहत का काम आता था, कोई सामग्री आती थी तो आदमी, गरीब आदमी, अपन आदमी कहता था पहले मुझे मत दो, हमसे जो गरीब है उसको दो। आज इस पढ़े लिखे समाज में इस तरह की स्थिति हो गई कि पढ़े लिखे लोग सबसे पहले चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे पास आए। इस चरित्र को बदलने का काम ऐसी ही संस्था कर सकती है। मैं जहां पढ़ता था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा, उसके संस्थापक को दुनिया जानती, मैं उनका एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा। उस प्रसंग को इसलिए सुना रहा हूं कि उन प्रसंगों को आज साकार करने का काम ऐसी ही संस्थाएं, ब्रह्म कुमारी, हमारी बहनें ज्यादा अच्छी तरह कर सकती हैं। और वो कौन लोग थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था लाल किले से कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी, जवानी, सब कुछ, ताकत लगा दिया हमको आजाद कराने के लिए, कुर्बानी दे दी, कम से कम उनकी स्मृति में हम देश को विकसित देश 47 तक बनाकर छोड़े, ये हमारा मॉरल दायित्व है। उस काम में ये संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती, इसलिए मैं कह रहा हूं। हमारे विलक्षण विद्वान थे महामना मदन मोहन मालवीय, पर जब बिल्कुल वृद्ध हो गए तो अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने जो आवास था वहां रहते थे, तो उनके घर में दो किचन चलते थे, एक किचन जिसमें उनका निजी खाना बनता था, एक किचन में उनके घर के सदस्यों का खाना बनता था। एक बार उनके पोते गिरधर मालवीय, जो बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हुए, उनसे मैंने ये किस्सा पूछा, उन्होंने मुझे बताया, वो मैं आपको सुना रहा हूं। घर में नाश्ता नहीं बना था, गिरधर मालवीय छोटे थे, वो जा रहे थे परीक्षा देने के लिए, तो घर का जो मालवीय जी के किचन का जो व्यक्ति इंचार्ज था वो आकर के कहा, बाबू अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खिला दूं आपके पोते को, आपके यहां नाश्ता बना है, घर के किचन में नहीं बना है। मालवीय जी ने कहा कि नहीं, उसको भूखे जाने दो और घर के लोगों को कहो कि उनके पास एक आध पैसे हो तो दे दे, वो नाश्ता कर लेगा। जब वो लड़का लौट कर आया, यानी गिरधर मालवीय जो बाद में हाईकोर्ट के जज बने, तो मालवीय जी भूखे बैठे थे दोपहर में, दोनों साथ खाना खाने बैठे, तो पूछा गिरधर मालवीय जी ने कि दादाजी आपने मुझे भूखे क्यों रखा? कहा अभी नहीं समझोगे, जब बड़े होगे तो समझोगे। पूछा फिर भी बताएं क्या है? कहा कि मैं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मेरे किचन में जो अन्न दान से आता है, बनारस के एक बड़े शिव प्रसाद गुप्त जी हुए जिन्होंने काशी विद्यापीठ से लेकर ऐसे दानवीर हुए जो चुपचाप सारी संपत्ति देश के विकास के लिए लगा दी, कहीं अपना नाम नहीं रखा, वैसे व्यक्ति के घर से मेरा दान वो राशन आता है, तो मैं देश के लिए काम करता हूं, इसलिए सुराशन को पचा सकता हूं क्योंकि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, तुम घर के लोग देश के लिए काम नहीं करते, इसलिए वो दान का अन्न मत खाना। मैं जब और थोड़ा वयस्क हुआ और पढ़ने लगा चीजों को, तब समझ पाया इसका मर्म। महाभारत पढ़ रहा था, महाभारत में जब 10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया पर होते हैं, सब लोग सुनने जाते हैं, द्रौपदी सुनने नहीं जाती। एक दिन कृष्ण आग्रह करते हैं कि आप भी सुनने चलो, द्रौपदी जाती हैं बहुत अन्यमनस्क ढंग से। तो उस दिन वह बोल रहे होते हैं भीष्म पितामह कि जहां कहीं अन्याय हो, अत्याचार हो, अगर आप उसके बारे में प्रतिरोध नहीं कर सके तो आपका व्यक्तित्व पौरुष सब खत्म होने लगता है। तो द्रौपदी ने कहा पितामह इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं, पूरी सभा सन, क्योंकि पितामह से कोई पूछता नहीं था। कहा पूछो बेटी। कहा कि ये आप बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, उस दिन कहा थे कुरु दरबार में जब मेरा सब कुछ चीर हरण हो रहा था और आप चुप थे, तो जो उन्होंने जवाब दिया उसको मालवीय जी के जवाब से जोड़कर देखिए तो उसका मर्म समझ पाएंगे। और हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मनीषियों ने उन्हीं मूल्यों पर भारत को बनाया था। कहा भीष्म पितामह ने कि हां बेटी तुम ठीक कह रही हो, तब मैं दुर्योधन के राज्य में था और वो अन्न खाता था, पाप के आय से अर्जित अन्न से मेरा विचार प्रवाह और मेरा रक्त दूषित हो गए थे, मैं विचार नहीं कर सकता था सही और गलत क्या है, आज वो रक्त निकल चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने गलती की। आज जब आप खबरें पढ़ते हैं, पढ़े लिखे अधिकारी, पढ़े लिखे लोग किस तरह से गड़बड़ियां देश में कर रहे हैं, मुल्कों में कर रहे हैं, कैन यू बिलीव? हमारे घर घर की महिलाएं कहना शुरू कर दें हर अपने पति से कि कोई भी पाप का अन्न अपने हक से जो अर्जित आय है उससे गलत आय ला रहे हो, घर में हम आने नहीं देंगे, देश बदल जाएगा। और ये आपका फर्म, ये आपका धर्म है, फर्ज है। और आज प्रधानमंत्री जी जिस तेजी से देश को आगे ले जा रहे हैं उसमें ये आपकी मदद की जरूरत है। मैं ब्रह्म कुमारी इस संस्था से, जहां बहनों ने बड़ा काम किया 90 वर्षों में, उनसे कहूंगा कि इस तरह की चीजों पर वो अपने यहां चर्चा करें, क्योंकि समाज को तीन ताकतें बनाती हैं, पहला घर, दूसरा स्कूल और तीसरा इस तरह के आश्रम, इस तरह की संस्थाएं। सरकार सब, विनोबा जी कहा करते थे सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, सरकार ने तो इतनी चीजें कर दी, तब हम देखते हैं घर से बाहर गंदगी निकालकर सड़क पर डालते हैं। हमारे निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। ये मानस, ये इनर बैलेंस दूर करने का काम ऐसे ही जगहों से होगा। इसलिए मैं सिंघल साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि घर, स्कूल और आश्रम, यही देश को, जो आप जब उसमें प्रवेश करते हैं प्रदर्शनी में तो देखते हैं, जो स्वर्णयुग कहते हैं भारत का, जो सोने की चिड़िया जिस भारत का कहते हैं, उसमें बनाने में काम घर, स्कूल और आश्रम, ये तीन बुनियाद थे। और तब राजसत्ता आती है। और बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी संस्कारों की भी बात करते हैं, वो संस्कार बनाने का काम हम लोग करें। हम बहुत सारी चीजें और
कह सकते हैं इस संदर्भ में आपसे, लेकिन चूंकि ये संस्था ऐसी है, उल्लेखनीय है आपके संस्था के बारे में कि इस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के साथ एनजीओ के रूप में कंसल्टिव स्टेटस मिला हुआ है, जो ग्लोबल पीस और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में कंस्ट्रक्टिव योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। ब्रह्म कुमारीज द्वारा किया जा रहा काम यह सिद्ध करता है कि स्थायी और वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत व्यक्ति के भीतर उसके मन और कॉन्शसनेस से होती है। हम व्यक्ति के अंदर के चरित्र को बदले, क्यों क्रिटिकल जगहों पर, वो हवाई जहाज में, वो डिफेंस की उन जगहों पर तस्वीर लेने की हो, क्या है, हम कहां जा रहे हैं और ये क्या प्रवृत्ति है कि अपनी ही तस्वीर 100 बार हम ले रहे हैं। ये एक किस्म से आंतरिक कौन सी चुनौती, किस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। पर इन चीजों को ट्रांसफॉर्म करने का काम ऐसी संस्थाएं ही कर सकती हैं। इसलिए आज ब्रह्म कुमारीज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में इस सटीक विषय पर, जिसमें इनर मास्टरी, ताकि ये सब बाहरी चीजें जिनका मैंने बहुत कम चीजें उल्लेख किया, ऐसी हजारों चीजें आप खुद रोज देखते होंगे, वो बैलेंस हम रख सके, हम इंसान के रूप में एक सहज सरल मानवीय इंसान बन सके, जिसकी कल्पना हमारी संस्कृति में लोगों ने किया, जिसकी गांधी ने किया, और जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ताकतवर 47 तक विकसित भारत के साथ दुनिया को रोशनी देने वाला भारत हम बने, उनमें आपकी विलक्षण भूमिका है। और मैं दीदियों से आग्रह करता हूं, ब्रह्म कुमारी इस संस्था से जुड़ी, कि आप इस परिवर्तन का वाहक रही हैं, पहले भी हैं और आगे बने, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का, बहुत ही ओजपूर्ण वक्तव्य हम सभी के बीच रखा। ये तो जीवन की सच्चाई है कि हमें सब कुछ साफ चाहिए, साफ पानी, साफ हवा, साफ रास्ते, प्रेम भी साफ, माहौल भी साफ और राजनीति भी साफ, पर अक्सर करके हम चूक जाते हैं अपने मन को करने में साफ। हमारा मन साफ होना बहुत जरूरी है और यही हम यहाँ सीख रहे हैं। मैं भाई साहब को बताना चाहूंगी कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ लेक्चर सेशन नहीं हो रहे, परंतु साथ साथ अर्ली मेडिटेशन सेशन भी होता है, अर्ली 4 o'clock, और बहुत उमंग से सभी आते हैं और सभी को यहाँ पर एक स्वमान, एक पॉजिटिव थॉट दिया जा रहा है डेली। आज के लिए क्या दिया है आप सभी को, थॉट याद है? किसको याद है आज सारा दिन, जिसका एटलीस्ट 10 times प्रैक्टिस करना है हम सभी को? मैं परमात्मा का प्रिय रूहे गुलाब हूं, कल रात को प्रैक्टिस कराई ना, बताया आप सभी को, और आज मॉर्निंग मेडिटेशन में कमेंट्री भी कराई होगी, तो इस बात को ध्यान रखना है, मैं वो रूहे गुलाब हूं जो खुशियां फैलाता है, मुस्कुराता, और परमात्मा का प्रिय हूं, तो वो एक मेरे अंदर पॉजिटिवनेस अंदर लाएगा, इसे हमें याद रखना है। अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर पीयूष भाई जी को, जो न्यू दिल्ली से हमारे बीच आए हैं, जो हमारे बीच कुछ अतिथि नहीं पहुंच पाए हैं, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, पर मैं मन से थोड़ा जो हमारे और भी अतिथि हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पूरी क्षमा याचना के साथ, कि वैसे तो सभी बड़े एक से एक वक्ता धुरंधर हमारे बीच बैठे और हम सुनना भी जरूर चाहेंगे उनको, लेकिन समय की सीमा है, तो जो समय दिया गया है हम दोबारा आप सभी को सुनेंगे अगले सेशंस में, पर आज इस इनॉग्रल सेशन में हम सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए है, तो जो समय मिला है समय का ध्यान रखकर संक्षिप्त में अपनी वाणी को, अपने विचार रखेंगे यहाँ पर।
ओम शांति। आप सभी थोड़ा मुस्कराइए, क्योंकि आज का विषय क्या है, इनर मास्टरी माने मुस्कराना, लेकिन आप सबके चेहरे बहुत गंभीर हो गए हैं, तो मुझे छोटे बच्चे की बात याद आती है। मैं कहीं पढ़ रहा था, छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कराता है, और हम बड़े हो जाते हैं तो हम मात्र 25 बार मुस्कराते हैं। उसका कारण आपको पता है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि छोटा बच्चा केवल वर्तमान में जीता है, और हम बड़े होके क्या करते हैं, हम या तो पास्ट में जीते हैं या तो हम भविष्य में जीते हैं। तो हम एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे मुस्कराने की, एक बार सब खड़े हो जाएंगे। हम कब मुस्कराते हैं? हम मंच को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, हाँ जी, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम कहते ठहरो ठहरो जरा दोबारा बोलना क्या बोला, तो हम अपनी प्रशंसा करेंगे, मैं बोलूंगा वाह भाई मैं, तो आपको मेरे साथ मुस्करा के बोलना है, अपने आप को ब्लेस करना है, राइट। चलिए ऐसे हाथ करिए मेरे साथ, बोलिए वाह भाई मैं। नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, आप ये बात मोहब्बत से नहीं बोल रहे हैं, मजबूरी में बोल रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए, इसको स्वीकार कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड इनर मास्टरी, राइट। दोबारा से बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर मेरे साथ बोलेंगे वाह भाई मैं। नहीं अभी महिलाएं थोड़ी कम मुस्करा रही हैं, मुझे पता नहीं रीजन क्या है। दोबारा से बोलिए वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे स्पाउस, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जोरदार ताली बजाएं और बैठ जाएं सभी। जी कुछ लोगों को यहां आना था लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, तो उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज भेजे हैं, तो ये मैसेज पहला मैसेज नीति आयोग से है। आई एम प्लीज टू नो दैट साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग ऑफ ब्रह्म कुमारीज द जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग अ नेशनल सेमिनार ऑन इनर मास्टरी फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम 21st to 25th of मे एट माउंट आबू। आई बिलीव द पार्टिसिपेंट्स विल गेट इमेंसली बेनिफिटेड बाई अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। आई सेंड माई बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सेमिनार, साइंड बाई डॉक्टर एम श्रीनिवास। ही इज मेंबर नीति आयोग, हिज स्टेटस इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दूसरा मैसेज हमारे पास आया है ONGC के चेयरमैन से, उनका भी बहुत आने का मन था लेकिन उनकी बात मैं आपको सुनाऊं। वो कहते हैं पीयूष भाई पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से मैं हर दिन ऑफिस से अपने घर 1 बजे वापस जाता हूं। आप सब समझते हैं एनर्जी क्राइसिस है देश में, पेट्रोल की बहुत मारामारी है, तो उनका मन तो बहुत होता है यहां आने का। जब से वो चेयरमैन बने हैं मेरा 6 बारी उनसे मिलना हुआ है, वो ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स भी आए हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने डेलीगेशन भेजा, ऑफिशियल डेलीगेशन ONGC का यहां आया हुआ है। बहुत सुंदर मैसेज उन्होंने दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द थीम यू हैव चोजन इनर मास्टरी फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस रेजोनेट्स विद मी मोर देन यू माइट एक्सपेक्ट। इन नियरली 4 decades इन द एनर्जी सेक्टर आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग अलोंगसाइड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड पीपल, इंजीनियर्स हु कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट इवन फ्रेम, साइंटिस्ट हुज ग्रेस्प ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इज जेन्युइनली हम्बलिंग, एंड येट when I think about the individuals who left the deepest mark on their organizations, on the people around them, on the work itself, technical brilliance alone does not explain it. There was always something else, a steadiness, a composure under pressure, an ability to stay anchored when everything around them was shifting. This is precisely why I value what the Brahma Kumaris have been doing for decades, creating spaces where accomplished, busy professionals can step off the treadmill for a few days and attend to the one resource they almost never think about replenishing themselves. Be service our machines, be upgrade our systems, be maintain our infrastructure with great diligence, but the mind, the instrument that powers all of it, we somehow expect to run endlessly without care or attention. that is neither wise nor sustainable, and deep down most of us know it. I am told that this conference brings together Raja Yoga meditation, reflective sessions and conversations led by some of the most respected teachers in this tradition. I have no doubt that what you experience over these 5 days at this Gyan Sarovar will stay with you long after you return to your desks and your daily routines. The real measure of a gathering like this is not what happens during it, but what quietly shifts within you afterwards in how you lead, how you listen, how you respond when things get difficult. I wish each one of you a deeply enriching experience. May you carry something valuable back from Mount Abu, not just for your professional lives, but for your families, your teams, and most importantly, for yourselves. Om Shanti, signed by Arun Kumar Singh, Chairman and CEO, ONGC. Next message has come from NBCC India. I would like to express my sincere gratitude for your kind invitation to attend the Conference on Inner Mastery for Maximizing Performance being organized by Brahma Kumaris, Mount Abu, from 22nd May to 24th May 2026, and for the honor extended to me as a guest of honor for this prestigious event. I am confident that the event will be a great success and will provide immense value and inspiration for all the participants. I convey my best wishes to the organizers and attendees for a highly successful and impactful program. My best wishes, signed by Dr. K.P. Mahadeva Swami. And the last message has come from ONGC Videsh. It is a matter of immense pleasure that scientists, engineers and architects Wing of Raja Yoga Education, a research foundation, has organized a national conference on inner mastery for maximizing performance at Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, Gyan Sarovar, Mount Abu, from 21st of May to 24th of May. I am sure that in today's world of cutthroat competition, immense work pressures and stresses, this conference will go a long way in enhancing the inner strength and aligning the mind, emotion and actions of the participants. I wish all success to the organizers and the participants of this conference and hope that the participants carry new insights, new perspectives and master new mantras of performance during the conference to harmonize their external success with internal growth. With best wishes, signed by Raja Rishi Gupta, Managing Director and CEO, ONGC Videsh. Thank you very much. Om Shanti.
Bahut bahut thanks Piyush bhai ka messages hamare beech rakhne ke liye. Kisi ne badi sundar baat kahi hai. उम्र को हराना है तो सपने जिंदा रखिए, उम्र को हराना है तो सपने जिंदा रखिए, घुटने चले न चले मन उड़ता पंछी रखिए, मन उड़ता पंछी रखिए, और उम्र के बंधनों को तोड़कर निरंतर क्रियाशील रहने वाले दिल्ली से पधारे माननीय भ्राता ए भौमिक जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी. आप फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दिल्ली, माननीय भ्राता भौमिक जी अपने विचार हमारे बीच रखेंगे.
गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओम शांति. रेस्पेक्टेड ऑल मेंबर्स ऑन डायस एंड ऑफ द डायस, इट इज ग्रेट ऑनर टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ द ऑगस्ट ऑडियंस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ. I think countries from India as well as Nepal are here. It is a great privilege to be here. And I express my humble gratitude to C Wing of RERF and Prajapiti Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya. Before I proceed on the topic inner mastery, I would just make one line introduction of myself. as sister has already said, I am Abe Homick, EDHR and legal. I just retired last year from Engineers India, New Delhi. I was in head office for last 20 years, sitting in Bikaji Kama place, and very closely associated Engineers India Limited, you must be knowing, a global consultancy organization and EPC organization under Ministry of Petroleum. We are closely associated as Brahma Kumari has been associated as Brother Piyush ji has already said ki he was reading the message of ONGC chairman as well as NBCC and other companies. So they are very closely associated with various companies like EIL, and especially Piyush ji and sister Girija has been conducting various program in EIL head office at Bikaji Kama place, as well as our R&D center at Gurgaon, and those number of programs has benefited as well as motivated our employees very much. And I remember our chairman also had come twice here, if I remember correctly, and had participated in various sponsorship of this Brahma Kumaris program at various areas. The topic inner mastery of maximizing performance is basically a success, productivity and growth of personnel in the corporate world. In fact, not corporate world, in every part of life, as you say. Many people think that performance comes from working long hours, what we do exactly in the office, learning more tricks, or constantly staying busy. But what I say is performance does not begin outside, it begins from inside. The way we manage our attention, emotion, energy, and our mindset determines the quality of everything what we actually produce. Mastering the attention before action and endless multitasking. Actually, we are now busy with a lot of multitasking. The companies are engaged ourselves in multitasking. But what I say is, while you do a work, why you want to deliver a project, when you want to deliver something to client, please give attention at least to yourself for 80-90 minutes, maybe 1 hour, 2 hours, for one work, not getting into so much multitasking. In fact, multitasking, I mean, you are involved in social media and so on and so forth. Phone you cannot avoid, you have to take urgent calls. But if you go on taking the WhatsApp messages, your 90 minutes perfect attention go away. Basically, once WhatsApp message or two WhatsApp messages, if you see, you have to start your attention to the job or to the project. It will take another extra 15 minutes to start the job. So what I say is, I'll give some example from my practical life, because I have been in 38 years in my forte as HR and legal as well. So take your attention, concentrate for at least 60 to 90 minutes for a walk. You can take a break, do some of your WhatsApp or social media jobs, come back to the job. Very important thing is, what I say is, second is regulating your emotional strength. Instead of, it is actually basically targeted to most young people who are coming to the life of service or entering to the service life. Once you get an opportunity, you should not feel that what will happen if I fail. You should think, I am getting an opportunity, I must grab this opportunity to prove myself. Once you have given a scope of presentation in the boardroom or to a bigger forum, grab that opportunity, that I must prove that I am worth of presenting in front of board members or in front of a bigger gathering. So this is one opportunity comes for the younger people. You must think that way. And third most important thing, that do a self-talk. Because Once you deal with and handle people as HR, in fact, HR is not human relations only. Every part of your life, every part of service, every part of even in your family, everywhere the HR is there. Human relations are there, whether it is a parents to children, whether it is colleagues, whether it is collectives, whether it is in boss and subordinates, human relations are there. Even you are a project manager, you are general manager, you are executive director, you need not be a HR person, you are HR to that job only. Now that self-talk, I mean, while you discuss with your colleagues, your subordinates, and most importantly as a HR, you discuss with the collectives as well. Humor, you're talking, and humor plays a very important role. If you go on doing a state talk, you find sometimes some hurdles are stuck in front of you. If you use humor in place of your talking, some of your logic while discussing with your collectives or colleagues will get ease. I'll give some example. As a executive director HR, I have to deal with my collectives, that means unions. They often come to my room. People say that they come with very agitated to my room, but goes very happily from my room. I'll give an example, a small example. One day one union leader of one group was very agitated. He was not agitated because he is not getting some benefits. He was agitated because why some other is getting that benefit. He was not interested for his benefit. So I could not make him understand for 2-3 minutes. So I gave an example. I think you might be knowing that example as well. It is a common example. I said, there are two neighbors. One was very pious, very religious, God-believing. So he, every day he makes, morning to afternoon he makes prayer. So one day God was very happy and came to him. In fact, he says, ki, I'll give some boon to you. You ask what you want. The person was happy for that prayer. The God is giving me boon. But the God said, there is one condition. Whatever you get, your neighbor will get double. So he started thinking immediately. That means if I get a car, the neighbor will get double the car. If I get a flat, neighbor will get double the flat. So after thinking for 2 minutes, he said, mera ek aankh phod do. So you see the sadistic thinking. So I gave that example to the unions. So the dialogue ended there. They left that topic immediately. Now it is not only the talking, it's also your act also sums up, because I'll give another small example what your act says. Before, after management trainee, before joining EIL, I was in another company under Ministry of Heavy Industry. It was a factory, 12,000-14,000 workmen. And I was given an assignment immediately after becoming management trainee to officer, recruitment. My staff said it is a very terrible area. You will get humiliated, manhandling and everything was there. So I said, okay, it is not my choice. I was given, let me take the challenge. It is a lucrative job from the skilled to unskilled area. Suppose there is a post of train operator, jigboarder, rigger. So against one post or two posts, you have asked 10 people to attend the interview. And all the union people are belonging to either CITU or INTC or any other organization. So whenever such selection was there, the people used to come with cheats, and almost all candidates consist of one of the union, either CITU or INTUC. You cannot do any selection by that way. My predecessor, what used to do, sometimes they used to select INTUC people. INTUC people was very happy. Sometimes they used to select CITU people. INTUC people was brickbatting. This way they were doing it. I said, no, let me start with the selection. Properly, fair selection, no C2, no INTUC. The day I started, the INTUC people who are very angry with me, they went to the my works manager. They said, ki, these young people does not listen to anybody. Whatever request we made in the sleep, he just throws it. I don't throw it, I just keep it in my drawer. I don't humiliate them. But I did not listen to them. I did as per the fair selection. Works manager said, what you do is, they are coming to me for a lobbying and some humiliation will be done. You better leave your seat for some time. I'll call you. I said, sir, whatever you do, do not change the panel. If you change the panel, I cannot work anymore because my first attempt will be getting jeopardized. So, and it happened. And it went for 5-6 months. CITU, the biggest the trade union controller in the industry, saw this. They said to their union, do not disturb the person if he is doing a fair selection. Let him continue, but only observe whether he is doing a mistake or not. I stayed there, that company, for 5 years. And believe me, I was never manhandled. I was never humiliated. I never had any bad relation with the unions. I went to Assam for 7-8 years in the time of Alpha Salpha. There also the relation continued. What I am saying is, yes, you carry the human relations with them. You do good. You go on with the talk, including humors, etc. But state talk also should come with your act as well. So these are the few things that young people should say, and I tell my colleagues that young people, please carry human relations. Everybody, whether it is vendor, whether it is the people who are coming for marketing, your relation, long-term relation will face you for time. Whenever you want some emergency job from them, they will come if you are maintaining the relation. Otherwise, your only hello, hi will never do. And lastly, what I want to finish with this, please do not obsess with your outcome. Remain concentrated with your process. Your process will give you the outcome and you will be happy going home with your attention to the process only. Thank you everyone.
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता भौमिक जी का अपने विचार हमारे बीच रखने के लिए. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे मंच से, हमारे कुछ अतिथि अभी भी हैं जिनकी शुभकामनाएं हमारे बीच पहुंचना बाकी है, तो जो समय मिला है संक्षिप्त में अपनी शुभकामनाएं हम सभी के बीच रखेंगे. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय भ्राता राम कुमार श्रेष्ठा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेपाल.
थैंक यू. गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा दिल्ली, रेस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर्स इन द डैश, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट एंड ऑल ऑफ यू ब्रदर एंड सिस्टर, ओम शांति एंड नमस्ते. It is truly a matter of gratitude and personal happiness for me to present here at this conference cum meditation. This is my first time in Mount Abu and I am from Nepal. As already mentioned my introduction that I am working at the level of Joint Secretary in Government of Nepal. Currently, I am the Executive Director of Training and Research Center, which is the ISO certified research center in Nepal. And last year, I was Director General of Department of Water Supply. I also got invitation last year from Bharat Bhushan Bhaiji, but that time I am little busy, so this time I attend this conference and I want to thank to especially respected Rajyogi BK Mohan Singhal Bhaiji and Jyoti Bhaiji from Nepal. He is here in the gathering. And in Nepal, Raj Yoga has found a rapidly growing resonance. This widespread embrace of spiritual values in Nepal highlights how the light of Mount Abu has truly crossed borders to illuminate the minds and bring sustainable peace to the heart of Nepalese people. And I think the spirituality has no geographical boundary. And as engineer, scientist, and architects, and the leader, we dedicate our lives to create solution for the society. We build system, infrastructure, institution, and technologies. I am also a civil engineer. But there is an, we solve the external problems every day, but there is an important question we rarely ask ourselves. Who is managing the mind of the person who manages all these systems? Today, our performance is measured by output, deadline, productivity, target, promotion. Society applauds visible achievement, but behind those achievements, there is a mental pressure, emotional fatigue, stress, and sometimes even inner emptiness. Internally, externally we may appear successful, but internally are we peaceful? Are we stable? Are we truly fulfilled? This is why the theme of this conference, Inner Mastery for the Maximizing Performance, is deeply relevant to every professional today. True performance does not come from only the technical knowledge and intellectual capacity. Real performance emerges when the mind is calm, emotions are balanced. A dispersed or disturbed mind may work hard, but stable mind work wisely. In Nepal, in our engineering professional, especially in development sector, we often work in difficult geographical condition and under high responsibility, in sometime in political pressure also. This has taught us an important lesson that outer development becomes sustainable only when inner stability supports it. We can build very strong outer infrastructure in the physical world, but until our inner state is strong, the external success remains incomplete. Today, science has reached incredible height. We can build smart cities, we have AI, we can build mega structure and complex engineering system. But despite all this achievement, human stress continue to rise. Why? Because while we upgrade our technology, many times we forget to upgrade our inner operating system. This is where meditation becomes highly relevant, not only as a spiritual practice, but as an inner technology. Just as engineer calibrate instrument for accurate performance, meditation helps us to calibrate our thoughts, emotions, and decision. I strongly believe that this conference creating much needed bridge between science and spirituality, between professional excellence and human value. The greatest invention in the world is not one that powers external machines, but one that gives the right direction to our mind and to our inner thought, ultimate peace to our mind. As we begin this meaningful gathering, let us not simply attend the sessions, let us experience the transformation. Thank you. Om Shanti. Namaste.
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता राम कुमार श्रेष्ठा जी का. आप विशेष नेपाल से हमारे बीच में आए हैं और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल बना दिया आप सभी ने, जो नेपाल से हमारे आए हैं अतिथि. जैसे चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, पर वो जहां जाता है उसी घर को रोशन कर देता है, इसी तरह कुछ लोग होते जो अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, पर दूसरों की जिंदगी को खुशियों से भर देते, रोशन कर देते,
और ऐसी एक हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे संस्था के सेक्रेटरी जनरल परम आदरणीय करुणा भाई जी। हम आपके अमूल्य वचनों से अभी लाभान्वित होंगे।
सत्यम शिवम सुंदरम। स्टेज में जो मेरे साथी और सामने बैठे हुए हमारे परिवार भाइयों बहनों, इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ। आप सभी में फर्स्ट टाइम कौन आए हैं वो हाथ उठाए। थैंक यू। क्योंकि आप सबको देखकर मुझे भी 1960 में फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका परिचय दीजिए। मैंने दादी जी को कहा कि मेरा नाम, मैं इंजीनियर हूँ, HMT में उस समय पर काम करता था बेंगलोर में। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं आपका परिचय बताइए, जो निज परिचय क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उनको दिया, ये यही तो है मेरा। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है आप। तो मुझे इन्होंने बताया कि भाई ये हाथ किसका है। तो मैंने कहा मेरा है। ये सिर किसका है। मैंने कहा मेरा है। तो ये बॉडी किसका है। मैंने कहा मेरा है। तो आप कौन है। आपने तो बॉडी का परिचय दिया क्या करते हैं, परंतु आप कौन हो। तो मैं समझता हूं पहला दिन ये पाठ हमको यहां पढ़ाया जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, बट शरीर का मालिक हूं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। तो मुझे ये सुनते हुए, तो हमारी किसी भी एजुकेशन में ये नहीं सिखाया गया था, तो मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चेतन आत्मा हूं। तो उन्होंने पूछा कि आपको दूसरे दिन आना है दूसरा पाठ के लिए। तो जब मैं दूसरे दिन आया तो उन्होंने कहा कि आप परमात्मा को जानते हैं। तो मैंने कहा जानता तो नहीं हूं, मानता हूं। तो कैसे मानते हैं आप। तो हम पूजा करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कुछ जो हो सके हमारे से वो भी ईश्वर के सामने रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आखिर आपका इच्छा क्या है, क्या पर्पस है जो आप करते हो। जॉब करते हो तो पैसा मिलता है, तो ईश्वर के लिए साथ आप क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सब हमको यही कहते हैं कि जो ईश्वर देता है वो दूसरा कोई नहीं देता है। तो उन्होंने बताया ये शरीर आपको कोई दे सकता है। तो जिस पे हम लोग हैं अभी कितना अच्छा है, हर एक को अपना मुकुटा देखने में भी बहुत खुश होते हैं हम लोग। तो पहली तो यही ईश्वर की देन है जो हम सब इस सृष्टि में आनंद ले रहे हैं। तो सब कुछ देने वाला कहते हैं करण करावनहार तू ही प्रभु, तो ईश्वर है। तो ईश्वर के साथ आपका कोई संबंध भी है, क्योंकि हम तो जिस मंदिर में जाते हैं वहां मूर्ति ही है, परंतु हम तो चेतन हैं। तो ईश्वर के साथ आपका कोई संबंध है? तो मुझे याद आया एक श्लोक, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो ईश्वर हमारा माँ भी है, पिता भी है, बंधु भी है। तो दादी जी ने पूछा कि कभी उनके पास गए होंगे? अरे माँ बाप के पास तो बच्चे जाते हैं। हमने कहा मंदिर में ही गए हैं, बाकी तो और कहीं नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो मैंने कहा ध्यान तो योगा करना आता है, परंतु आप जो ध्यान कहते हैं वो हम इतना नहीं जानते हैं, भजन तो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब तक आप ध्यान करना नहीं सीखेंगे, मन को ईश्वर के साथ नहीं करते हैं, तो ईश्वर से संबंध कैसे होगा? तो ईश्वर तो आपको कुछ देना भी चाहे तो टेलीफोन करे, तो कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। जो आपका कम्युनिकेशन ही आपका मन से नहीं होता है तो आपको ईश्वर कैसे दे सकता है? तो इन्होंने कहा कि भाई वो तो आपको करना पड़ेगा, ईश्वर के साथ अपना संबंध जो है वो तो जोड़ो। तो मैंने कहा ये कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम करें? तो इन्होंने बताया कि भाई अभी तीसरा दिन आएंगे तो हम वो आपको सिखाएंगे। अब दोनों दिन पजल में ही रहा। हम समझते थे मैं बहुत कुछ जानता हूं इस दुनिया में, परंतु देखा बहुत कम जानते हैं। तो मैंने कहा एक दिन और जाके देखते हैं कि क्या हमको बताएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ईश्वर को ध्यान करना ईश्वर के गुण है और ईश्वर हमारा पिता है। तो आज दुनिया में बहुत कुछ पैसे वाले भी है, मिनिमम है, तो परंतु गुण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो ईश्वर के गुण जानिए, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, तो आपको भी जीवन में यही करना है। किसी को देना हो तो आप जितना भी पैसे दीजिए वो खत्म हो जाता है, फिर क्या होगा? परंतु गुण खत्म नहीं होता है। जैसे कहा ना सबने, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल। तो इसी प्रकार हमको ईश्वर का गुण और ईश्वर कौन है, वो पिता है, परमात्मा, परम पिता परमात्मा। तो इसलिए यहां हमको यही सिखाया गया जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो ईश्वर के साथ संबंध कैसे किया जाए, कैसे याद किया जाए सरल रूप से, इसके लिए कोई बैठ के करने का वो भी कर सकते हैं, परंतु कर्म करते हुए भी हम कर सकते हैं, जिसको कर्मयोग कहा जाता है। तो इसलिए ईश्वर ने भी इस सृष्टि के लिए एक ही लॉ बनाया है, वो है कर्म। जैसा हम करते हैं वैसे हमको वापस मिलता है. As you sow, so you get. तो इसीलिए हम लोगों को यहां यही सिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है इस दुनिया में, ताकि हमारे साथ चले. ये बैंक का तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है, कहते हैं कि भाई लोग पैसा निकाल रहे हैं करके, परंतु हमारे साथ जो चलने वाली चीज है वो एक गुण ही है, श्रेष्ठ कर्म है. तो इसीलिए यहां से आप जाएंगे तो आपको हमारी बहनें इतना अच्छा, जैसे हम सब ईश्वर के बच्चे हैं तो हमारे अंदर गुण कैसे लाया जाए और दूसरों को हम कैसे दिया जाए, तो वो हमको सिखा करके भरपूर करके भेजेंगे. आप भी यहां वापस जाके सबको बता सकेंगे कि भाई यहां आए और हमने क्या सीखा, दूसरों को भी आप दे करके उनको खुशी में ला सकते हैं. मेरा ये पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके सामने रखा हूं. ओम शांति.
आदरणीय भाई जी का बहुत दिल से धन्यवाद. इस आध्यात्म जगत से जुड़ने का आपने अपना एक्सपीरियंस सुनाया और अनुभव हमें ज्यादा सिखाता है. तो हमारे पास समय बहुत कम बचा है, भोजन का समय भी हो गया, सबको भूख लगी होगी, पर हमारे बीच हमारे अभी भी दो गेस्ट बचे हुए. तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक मिनट के लिए सिर्फ अपनी शुभकामनाएं आकर हमारे बीच देंगे. हमारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश राजामुंद्री, माननीय भ्राता सगम रेड्डी जी, श्रीकांत एन रेड्डी जी, शॉर्ट में अपनी शुभकामनाएं बस हमारे बीच रखेंगे.
थैंक यू. I'll just introduce myself. I am Sri Kantanath Reddy. I am an Indian Forest Service officer. I have been in the service for the last 27 years. I have served in Forest Department and outside the Forest Department in various positions. I feel very honored and humbled to be here as a guest of honor. I would like to share a few of my experiences. I know it is very difficult for a speaker to keep the audience engaged, especially in the penultimate session of the lunch. So I'll not take much time. I just want to share my experience with this inner mastery. Actually, when we are inducted into the service as a bureaucrat, we feel recognized by the society. That to a great extent validates you, and you start getting used to being validated. And the moment somebody doesn't validate you, you feel there is some sort of a gap. You feel incomplete. So this incompleteness is felt not only in terms of not being validated, you also feel this incompleteness on many occasions. When somebody dies, especially those who are very close to you, even it could be a dog, you feel incomplete. You feel incomplete if you have lost something that you consider as dear to you. But is this incompleteness, is it natural? Did we really lose anything that belonged to us? If this question is properly answered, then I think most of us will not feel this incompleteness. In fact, I was feeling incomplete on many occasions. But thanks to the teachings of Brahma Kumaris, especially I listened to all the sessions of Soul Reflections by B.K. Shivani ji. I made notes. I followed them very religiously. I implemented them. And I really benefited from them because of this. Maybe I cannot claim myself as an inner, have got inner mastery. But to a great extent, I have overcome the incompleteness. I'll just quote one example. Once I was chief conservator of forests, Vizag. So one of my DFOs had come to report before me after he has taken over immediately the division. So he was sitting in front of me, cross-legged. So my driver, who was observing all this, this was in an open session in the zoo, Vizag Zoo. So my driver came to me, you know, he just was, sir, this DFO is sitting cross-legged, he is not respecting you. I said, those are his legs. He is putting his leg on, one leg on his other leg. What is my problem and what is your problem? So this awareness that you are not chief conservator everywhere. You are not husband everywhere. You are not a boss everywhere. You have a role. In the house, you have a role as a husband. With the children, you have a role as a father. With the society, you have a role as a citizen. With the office, you have a role as a boss. So when you keep conscious, when you are conscious about your role at different places, then you don't feel that incompleteness. This is what I have experienced, and especially the contents of the book, The Power of One Thought. I have read it thrice. I made notes. I followed them very, very religiously for considerably good amount of time. And let me tell you, I have benefited immensely. Not only me, lot of my subordinates, people around me, my friends, they all have felt the difference. And this difference that I could spread among my small sphere of influence has been greatly possible because of the teachings of Brahma Kumaris. I immensely thank the Ishwariya Vidyalaya of Brahma Kumaris for giving this opportunity of realizing ourselves. And secondly, today being the International Day of Biological Diversity, I just want to remind that of late, development has been seen as just improving of facilities for one species on this planet. That species is humans. 829 crores of humans among 2 million species. So we are occupying almost 80 to 90% of the land. And we want more and more and more. Here in this August gathering, we have scientists, engineers and architects who shape this planet. Architects are making plans for bigger cities, better cities, smarter cities. But are we inclusive in our approach towards other forms of life? When we say we want to be the children of God, are these life forms, are they not the children of God? Are they the creation of somebody else? So if they are the creation of the same God, the same Paramatma that we look up to, then I think it is our responsibility to make development more sustainable, more inclusive and nature friendly. So with I request the scientists, engineers and the architects to kindly have an inclusive approach towards all the life forms. And you know, like if you realize, as soon as you entered Mount Abu, the foothills, and when you were coming up, you would have seen lot of greenery, even in this barren, sort of a state with such high temperatures. I know, being a forester, I can understand what kind of efforts, both the Brahma Kumari as well as the society, including the departments here, they have put in to make this area so green. We are in the midst of, sanctuary. So this sanctuary means, you know, it is the sanctum sanctorum of a temple. So this area that we are living in is pure not only because of the thoughts, but also because of what nature has given. So let us keep this pristine, serenity of this planet by being inclusive. So with this, I really thank the organizers for giving me an opportunity to share my thoughts and greetings. I wish everybody takes home a very peaceful life from here, and the life hereafter is more peaceful, and they are also the masters of themselves. Thank you.
आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी न्यू दिल्ली से IOC में CGM के पद पर अभी कार्यरत बहन अंजलि भावे जी को.
थैंक यू. प्रणाम. और बहुत ही मुश्किल काम है मेरा, बिकॉज मैं लास्ट स्पीकर हूं डे की. मैं बिल्कुल आपका टाइम नहीं लूंगी. डिस्टिंग्विश्ड, very very distinguished dais, which is such a healthy mix of spirituality, a political leadership and a professional leadership. Main do hi baatein kahungi, sirf do sir, only two lines, and I'll finish in 1 minute. One is, one thing which when I came into contact with this fantastic institution Brahma Kumaris, I was told that you are a very good soul, that's why you are here. And I would like to say this to all my fellow participants, that we are very good souls and that's why we are here. And second, one of the aspects of inner mastery is be a good listener. I would like to practice this today, here and now. Let's be all a very good listener. I have been a very good listener to all the good thoughts that this distinguished dais has given to us. In fact, all the good thoughts that we are listening since morning, and let's spread it around the way we landed here. And thanks to Yatin, who has been my fellow colleague in the organization that I belong to, Indian Oil Corporation. He brought me the same way. I would like to connect many more souls to this organization. So thank you very much. Thank you Single Bhai and Brahma Kumaris to give me this opportunity. Thank you very much.
बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि बहन का. आप सभी का भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से. हमारा आदरणीय मंच, जिनका भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं, और आप सभी का भी. अभी हम सिर्फ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिनका भी सहयोग है, हमारे सभी डिपार्टमेंट्स, हमारे बड़े और सेवाधारी, उन सभी का हम दिल से शुक्रिया करते. अभी हम 1 मिनट के लिए सबसे पहले सुप्रीम साइंटिस्ट जिनकी सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ, उनको शुक्रिया करेंगे. 1 मिनट सिर्फ उस परमात्मा पिता को याद करेंगे और फिर सभी भोजन पर चलेंगे.